मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती के अनुसार सुसमाचार। मत्ती अध्याय एक। यीशु मसीह की वंशावली, जो दाऊद और अब्राहम के वंश के थे। अब्राहम के बेटे का नाम इसाक और इसाक के बेटे का नाम याकूब था। याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए थे। यहूदा और तमार से पेरेज और जेरा पैदा हुए थे। पेरेज का बेटा हेजरोन और हेजरोन का बेटा एराम था। एराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन पैदा हुआ। सलमोन और राहाब से बोज तथा बोज और रूत से ओबेद पैदा हुआ और ओबेद से यिशे पैदा हुआ। यिशे का बेटा राजा दाऊद था। उरिया की पत्नी और दाऊद से सुलेमान पैदा हुआ। सुलेमान का बेटा रहुबियाम था। रहुबियाम का बेटा अबिया और अबिया का आसा। आसा से यहोशापत, यहोशापत से योराम और योराम से उजिया पैदा हुआ। उजिया से योताम, योताम से अहाज और अहाज से हिजकिया पैदा हुआ। हिजकिया से मनश्शे, मनश्शे से अमोन और अमोन से योशिया पैदा हुआ। यहूदी लोग बेबीलोन ले जाए जा रहे थे, तभी योशिया से यकुन्या और उसके भाई पैदा हुए थे। बेबीलोन ले जाए जाने के बाद यकुन्या ने शालतियेल और शालतियेल ने जरुबाबेल को जन्म दिया। जरुबाबेल ने अबियूद और अबियूद ने एलियाकीम और एलियाकीम ने अजोर को जन्म दिया। अजोर से सदोक और सदोक से अखीम और अखीम से एलीहूद पैदा हुआ। एलीहूद से एलियाजर, एलियाजर से मतान और मतान से याकूब पैदा हुआ। याकूब से यूसुफ, जो उस मरियम का पति था जिससे यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब्राहम से दाऊद 14 पीढ़ियां, दाऊद से बेबीलोन की गुलामी तक जाने में 14 पीढ़ियां और बेबीलोन की गुलामी से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुईं। यीशु मसीह का जन्म इस तरह हुआ, यूसुफ के साथ मरियम की सगाई के बाद, इसके पहले कि उनका कोई शारीरिक संबंध हो, पवित्र आत्मा के द्वारा वह गर्भवती हो गई। एक धर्मी व्यक्ति होने की वजह से यूसुफ ने, जो मरियम की बेइज्जती नहीं देख सकता था, चुपचाप से अपनी सगाई की शपथ को तोड़ना चाहा। लेकिन जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक सपने में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रकट होकर कहने लगा,
दाऊद के वंशज यूसुफ, मरियम को अपने यहां लाने से मत डरो। उसके गर्भ का फल पवित्र आत्मा की तरफ से है। उसके एक बेटा पैदा होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके गुनाहों की सजा से बचाएगा।
यह सब इसलिए हुआ ताकि जो कुछ प्रभु ने नबी के जरिए कहा था वह पूरा हो। वह यह कि
देखो, एक कुआरी गर्भवती होगी और उसके एक बेटा होगा, उसका नाम इम्मानुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, रखा जाएगा।
नींद से जाग उठने के बाद उसने वही किया जिसे करने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आज्ञा दी थी। उसने मरियम को अपनी पत्नी करके अपना लिया, लेकिन मरियम के साथ उसने तब तक शारीरिक संबंध नहीं रखा जब तक मरियम ने अपनी पहली संतान को जन्म ना दिया और उसने उसका नाम यीशु रखा। मत्ती अध्याय दो। राजा हेरोदेस के दिनों में, यहूदा के बहतलेम में जब यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व देश से ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे,
यहूदियों के राजा जिनका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा है और हम उनकी इबादत करने आए हैं।
हेरोदेस राजा और यरूशलेम के लोग यह सुनकर घबरा गए। तब राजा ने लोगों के प्रमुख पुरोहितों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा,
मसीह का जन्म कहाँ हो सकता है?
उन्होंने उसे उत्तर दिया,
यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तुम किसी तरह से यहूदा के अगुओं में से छोटे नहीं हो, क्योंकि तुम में से एक शासक निकलेगा जो मेरे लोगों का चरवाहा होगा।
तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर पूछा,
तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था?
उसने उन्हें यह कहकर बेथलहम भेजा कि जाकर उस बालक के बारे में छानबीन कर लो, जब मिल जाए तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसको दंडवत करूं। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े। पूर्व में दिखने वाला वह तारा उनके आगे आगे चलने लगा और जिस जगह बालक था उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे खुश हुए। वहीं घर के अंदर जाने के बाद उन ज्योतिषियों ने यीशु को उनकी मां के साथ देखा। उन्होंने मुंह के बल गिरकर यीशु को दंडवत किया और अपना अपना थैला खोलकर यीशु को सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। परमेश्वर से सपने में हेरोदेस के पास ना जाने की चेतावनी पाकर वे दूसरे रास्ते से अपने देश को चले गए। उनके जाने के बाद एक स्वर्गदूत ने सपने में यूसुफ से कहा,
उठो, बालक और उसकी माँ को लेकर मिस्र देश को भाग जाओ। जब तक मैं तुमसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक की जान लेना चाहता है।
यूसुफ रात ही को उठकर बालक और उसकी मां को लेकर अंधेरे ही में मिस्र की तरफ चल पड़ा। वह हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, ताकि वह बात जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा कही थी कि
मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया,
पूरी हो। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह गुस्से से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा सही बताए गए समय के मुताबिक बेथलहम और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले सब 2 साल या उससे छोटी उम्र के लड़कों को मरवा डाला, ताकि जो बात यर्मिया नबी के द्वारा कही गई थी वह पूरी हो। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और चुप नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वह अब जीवित नहीं थे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखाई देकर कहा,
उठो, बालक और उसकी मां को लेकर इसराइल देश में चले जाओ, क्योंकि जो बालक की जान के प्यासे थे वे मर गए हैं।
वह उठा और बालक और उसकी मां को लेकर इसराइल देश में आया। लेकिन यह सुनकर कि अर्खिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर शासन कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर सपने में चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नाम के नगर में जा बसा, ताकि वह बात पूरी हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी कि
वो नासरी कहलाएगा।
मत्ती अध्याय 3। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह संदेश देने लगा,
मन बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है।
यह वही है जिसके बारे में यशाया नबी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। वह यह कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज सुनाई दी कि प्रभु परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करो। यूहन्ना ऊंट के बालों से बने कपड़े पहनता था, वह टिड्डियां और शहद खाता था। यरूशलेम, सारे यहूदिया और यर्दन के आसपास के लोग यूहन्ना के पास आने लगे। अपने अपने पापों को मान लेने के बाद यूहन्ना ने उन्हें यर्दन नदी में बपतिस्मा दिया। जब उसने बहुत सारे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने उनसे कहा,
हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बताया कि भविष्य के न्याय से बचो? इसलिए तुम्हारे मन के बदलाव का फल तुम्हारे जीवन में दिखाई दे। इस गलत फहमी में मत रहो कि अब्राहम तुम्हारा पिता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि इन पत्थरों से परमेश्वर अब्राहम के लिए बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखी हुई है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ जो मन बदलाव को दिखाता है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं उनकी जूती उठाने के लायक भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। उनका सूप उनके हाथ में है, वे अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेंगे। वे अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेंगे, लेकिन भूसे को उस आग में जलाएंगे जो कभी नहीं बुझेगी।
उस समय यीशु गलील से यर्दन के किनारे पर यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए, लेकिन यूहन्ना ने उन्हें मना करते हुए कहा,
मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहते हैं?
यीशु ने जवाब में कहा,
अभी ऐसा ही होने दो, क्योंकि हमें इसी तरह से करना जरूरी है।
तब यूहन्ना ने उनकी बात मान ली। यीशु बपतिस्मा लेकर जैसे ही पानी में से ऊपर आए, उनके लिए आसमान खुल गया। यीशु ने परमेश्वर के आत्मा को फाख्ते की तरह उतरते और अपने ऊपर आते देखा। साथ ही आसमान से आवाज आई,
ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं।
मत्ती अध्याय 4। बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उनकी परख की जाए। 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाने के बाद उन्हें जोरदार भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उनसे कहा,
यदि आप परमेश्वर के बेटे हैं तो इन पत्थरों से कहें कि रोटी में बदल जाएं।
यीशु ने जवाब में कहा,
लिखा है कि इंसान सिर्फ खाने से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर शब्द से जिंदा रहेगा।
तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर यरूशलेम में मंदिर की चोटी पर ले जाकर कहा,
अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं तो अपने आप को नीचे गिरा दीजिए, क्योंकि आपके बारे में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे ताकि आपके पैरों में पत्थर से चोट न लगे।
यीशु ने जवाब दिया कि
ये भी लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को मत परखो।
फिर शैतान ने यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर सारी दुनिया के राज्य और उनकी शान दिखाई और ये भी कहा,
अगर आप गिरकर मुझे दंडवत करें तो मैं ये सब कुछ आपको दे दूंगा।
तब यीशु ने उससे कहा,
भाग यहां से शैतान, क्योंकि लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करो और उन्हीं की सेवा और उपासना करो।
तब शैतान भाग गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा में लग गए। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना को कैद कर लिया गया है तो वह खुद गलील को चले गए। वहां से वह नासरत गए और फिर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली क्षेत्र में है, रहने लगे, ताकि यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई बात पूरी हो।
जबलून और नप्ताली के देश, झील के रास्ते से यर्दन के पार गैर यहूदियों का गलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी है, जो मौत के देश और साये में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी।
उस समय से यीशु ने सिखाना और यह कहना शुरू किया कि मन बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक ही है। गलील की झील के किनारे से गुजरते समय उन्होंने शिमोन और अंद्रियास नामक दो मछुआरे भाइयों को झील में जाल फेंकते देखा। उनसे यीशु ने कहा,
आकर मुझसे सीखो कि किस तरह से मनुष्य के मनों को परमेश्वर के लिए जीतकर उन्हें अनंत जीवन दिलाया जा सकता है।
वह तुरंत अपने जालों को छोड़कर यीशु के साथ हो लिए। वहां से जैसे ही यीशु आगे बढ़े, दो और भाइयों याकूब और उसके भाई यूहन्ना अर्थात जब्दी के बेटों और जब्दी को जाल सुधारते हुए देखा, और उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। वह भी तुरंत अपनी नाव और अपने पिता दोनों को छोड़कर यीशु के संग चल पड़े। यीशु सारे गलील से गुजरते समय उनके आराधनालयों में सिखाते और परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी देते और हर तरह की बीमारी और कमजोरी को ठीक करते गए। पूरे सीरिया में वे मशहूर हो गए। लोग बीमारों, भूत प्रेत पीड़ितों, मिर्गी और लकवे पीड़ितों को यीशु के पास लाए यीशु ने उन सभी को अच्छा कर दिया और गलील, डिकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन नदी के पास से भीड़ की भीड़ उनके पीछे चल पड़ी। मत्ती अध्याय 5। यीशु भीड़ को देखते ही पहाड़ पर चढ़कर बैठ गए और शिष्य उनके नजदीक आ गए। तब यीशु ये सिखाने लगे,
आशीषित वे लोग हैं जो स्वभाव से सीधे साधे हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आशीषित वे हैं जो दुख मनाते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आशीषित वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आशीषित वे हैं जो खराई के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपूर किया जाएगा। आशीषित वे हैं जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आशीषित वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आशीषित वे हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। आशीषित वे हैं जो अपने खरेपन की वजह से सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आशीषित हो तुम जब लोग मेरे नाम की खातिर तुम्हें तुच्छ समझें, सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे खिलाफ सब तरह की गंदी बातें कहें। खुश और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा इनाम है, इसलिए कि उन्होंने तुमसे पहले आए नबियों को भी सताया था। तुम इस धरती के नमक हो, लेकिन अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो इसे फिर किस तरह नमकीन बनाया जा सकता है? तब ये बिल्कुल किसी काम का नहीं, सिर्फ ये कि बाहर फेंक दिया जाए और इंसानों के पैरों से रौंदा जाए। तुम दुनिया की रोशनी हो। जो शहर पहाड़ पर है वो छिपा नहीं रह सकता। लोग दीपक जलाकर नीचे नहीं लेकिन ऊंचाई पर रखते हैं, तभी उस घर के सभी लोगों को रोशनी मिलती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी इंसानों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे स्वर्गिक पिता की बड़ाई करें। ये ना समझो कि मैं नियम शास्त्र और भविष्यवक्ताओं की किताबों को रद्द करने आया हूं। रद्द करने नहीं, लेकिन पूरा करने आया हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आसमान और पृथ्वी खत्म ना हो जाएं, तब तक परमेश्वर की व्यवस्था की छोटी से छोटी बात भी बिना पूरे हुए नहीं रहेगी, एक मात्र या एक बिंदु भी नहीं। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को ना माने और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उनको मानने के साथ सिखाएगा भी, वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारा खरापन शास्त्रियों और फरीसियों के खरेपन से बढ़कर नहीं है, तो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में दाखिला ना मिलेगा। तुम सुन चुके हो कि पुराने समय के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। जो कोई हत्या करेगा वो अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई से क्रोधित रहेगा वो स्वर्ग की अदालत में सजा के लायक होगा। जो कोई अपने भाई को नलायक कहे वो स्वर्ग की अदालत में सजा के लायक होगा। जो किसी को बेवकूफ कहे वो नरक की आग के खतरे में होगा। अपनी भेंट वेदी पर ले आने के बाद अचानक तुम्हें ये याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विषय में कुछ नाराजगी है, तो अपनी भेंट को वहीं वेदी के सामने छोड़कर जाओ और अपने भाई से पहले सुलह कर लो। उसके बाद आकर साफ दिल से अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाना। जब तक तुम अपने मुद्दई के साथ रास्ते में हो, झटपट उससे सुलह कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुम्हें मैजिस्ट्रेट को सौंपे और मैजिस्ट्रेट तुम्हें सिपाही को सौंप दे और तुम जेल में डाल दिए जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम पूरी कीमत चुका ना दो, तब तक वहां से छूट ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार मत करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी महिला को बुरी नजर से देखे, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अगर तुम्हारी दाहिनी आंख बुराई में गिरने की वजह बने तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दो, क्योंकि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारे अंगों में से एक बर्बाद हो जाए और तुम्हारी पूरी देह नरक में ना डाली जाए। अगर तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे बुराई में गिरने की वजह बने तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए फायदा इसी में है कि तुम्हारे अंगों में से एक बर्बाद हो जाए और तुम्हारी पूरी देह नरक में ना डाली जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को छोड़े तो तलाक नामा भी दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से छोड़ दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। जो कोई उस त्यागी हुई से शादी करे वो व्यभिचार करता है। तुमने सुना था कि पुराने समय के लोगों से कहा गया था कि वे झूठी कसम ना खाएं, लेकिन प्रभु के लिए अपनी कसम को पूरा करें। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी कसम ना लेना, ना स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि धरती परमेश्वर के पांव का पीढ़ा है, यरूशलेम की भी नहीं क्योंकि वो महाराजा का शहर है। अपने सिर की कसम भी ना खाना, क्योंकि तुम एक बाल को भी ना सफेद कर सकते हो ना काला, लेकिन तुम्हारी बात हां की हां या ना की नहीं हो। जो कुछ इससे अधिक होता है वो शैतान की तरफ से है। तुम्हें ये बताया गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे इंसान से झगड़ा मोल ना लेना। लेकिन अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर चांटा मारे तो अपने बाएं गाल को भी उसकी तरफ कर देना। अगर कोई जोर जबरदस्ती से तुम्हारा कुर्ता हड़पना चाहे तो अपनी शाल तक दिए जाने के लिए तैयार रहना। जो कोई तुम्हें बिना मजदूरी में एक कोस ले जाना चाहे तो उसके साथ दो कोस जाने के लिए तैयार रहना। अगर कोई व्यक्ति तुमसे मांगे तो उसे दे देना, और जो तुमसे उधार लेना चाहे तो उससे अपना मुंह ना मोड़ना। तुम्हें बताया गया था कि अपने पड़ोसी से प्यार करो और दुश्मन से दुश्मनी रखो, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना। ऐसा करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता के बेटे बेटी ठहरोगे, क्योंकि वो अच्छे बुरे दोनों ही पर अपना सूरज चमकाते हैं और वो अच्छे बुरे दोनों के लिए बारिश भी भेजते हैं। क्योंकि अगर तुम अपने प्यार करने वालों ही से प्यार करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या कर लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम सिर्फ अपने लोगों ही का अभिवादन करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या दूसरे लोग भी ऐसा नहीं करते? इसलिए जरूरी ये है कि तुम दयालु बनो, जैसे तुम्हारे पिता भी जो स्वर्ग में है दयालु हैं।
मत्ती अध्याय 6।
सावधान रहो, तुम लोगों को दिखाने के लिए अपने अच्छे काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से बदले में कुछ हासिल नहीं करोगे। इसलिए जब तुम दान दो तो अपने आगे ढोल ना पिटवाओ, जैसा ढोंगी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं। जब जरूरतमंद लोगों को कुछ दो तो जो तुम्हारा दाहिना हाथ करता है उसे तुम्हारा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तुम्हारा दान गुप्त रहे। तब तुम्हारे पिता जो गुप्त में देखते हैं तुम्हें आशीषित करेंगे। जब तुम प्रार्थना करो तो ढोंगियों की तरह ना बनो, लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उन्हें उनका प्रतिफल मिल चुका। लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो अपने भीतरी कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करके अपने स्वर्गीय पिता से अकेले में प्रार्थना करो। तब तुम्हारे पिता जो सब कुछ देखते हैं तुम्हें प्रतिफल देंगे। प्रार्थना करते समय दूसरे लोगों की तरह जो अविश्वासी हैं बकबक मत करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए उनकी तरह मत बनो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गिक पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानते हैं कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। इसलिए इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गिक पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे हर दिन की रोटी आज हमें दें। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को माफ किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को माफ करें। हमें प्रलोभन में पड़ने ना दें, लेकिन बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और शान हमेशा आपकी ही हैं, ऐसा ही हो। इसलिए अगर तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारे स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। परंतु अगर तुम लोगों के अपराध माफ ना करोगे, तो तुम्हारे परमेश्वर पिता तुम्हारे अपराध माफ ना करेंगे। जब कभी तुम उपवास करो, तो ढोंगियों की तरह तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। वे अपना मुंह लटकाए रहते हैं, ताकि दूसरे लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन जब तुम उपवास करो, तो अपने सिर पर तेल मलो और चेहरा भी धो, ताकि लोग नहीं लेकिन तुम्हारे आसमानी पिता जो गुप्त बातों को भी जानते हैं तुम्हें उपवासी जाने। इस हालत में तुम्हारे आसमानी पिता जो गुप्त में देखते हैं तुम्हें प्रतिफल देंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन संपत्ति मत बटोरो, जहां दीमक और फफुंद बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, लेकिन अपने लिए स्वर्ग में दौलत इकट्ठा करो, जहां ना तो दीमक और फफूंद बिगाड़ते हैं, ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है, वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। देह का दिया आंख है, इसलिए अगर तुम्हारी आंखें साफ हैं, तो सारी देह रोशनीमय होगी। परंतु अगर आंख अंधकारमय होगी, तो सारा शरीर भी अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए तुम में जो ज्योति है, वो अगर बुझ जाए, तो वो अंधियारा कितना भयानक होगा। कोई इंसान एक ही समय में दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से दुश्मनी और दूसरे से मोहब्बत रखेगा, या एक के प्रति वफादार रहेगा और दूसरे से धोखाधड़ी करेगा। तुम परमेश्वर और दौलत दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जीवन की चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या जीवन भोजन से और देह कपड़ों से बढ़कर नहीं? आसमान के पक्षियों को देखो, वे ना बोते ना काटते हैं ना गोदाम में रखते हैं, तो भी तुम्हारे स्वर्गिक पिता उनको खिलाते हैं। क्या तुम्हारी कीमत उनसे कहीं ज्यादा नहीं है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र में एक सेकंड बढ़ा सकता है? कपड़ों के लिए फिक्र क्यों करते हो? जंगली फूलों पर ध्यान लगाओ कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो मेहनत करते हैं ना काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपनी सारी शान में उनमें से किसी की तरह कपड़े पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी ऐसे कपड़े पहनाते हैं, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो क्यों नहीं पहनाएंगे? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन्हीं सब बातों को पाने की होड़ में लगे रहते हैं। तुम्हारे स्वर्गिक पिता जानते हैं कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और सही जीवन शैली को चाहो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आने वाले समय की फिक्र मत करो, क्योंकि भविष्य अपनी फिक्र खुद कर लेगा। आज के लिए आज ही का बोझ काफी है।
मत्ती अध्याय 7।
दूसरों पर दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि जिस तरह से तुम दूसरों को दोष देते हो, उसी तरह तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तुम अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखते हो और अपनी आंख का लट्ठा तुम्हें महसूस नहीं होता? जब तुम्हारी ही आंख में लट्ठा हो तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो कि लाओ मैं तुम्हारी आंख से तिनका निकाल दूं? हे ढोंगी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल लो, तब तुम अपने भाई की आंख का तिनका अच्छी तरह देखकर निकाल सकोगे। पवित्र चीजें कुत्तों को मत दो, अपने मोती सूरों के आगे मत डालो कि वे उन्हें पांव के नीचे रौंदें और फिर तुमको फाड़ डालें। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन इंसान है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर देगा, या मछली मांगे तो उसे सांप देगा? इसलिए जब तुम बुरे होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गिक पिता अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देंगे? इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि इंसान तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। सकरे फाटक से भीतर जाओ, क्योंकि विशाल है वो फाटक और चौड़ा है वो रास्ता जो बर्बादी को पहुंचाता है। ज्यादातर लोग इस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन छोटा फाटक और सकरा रास्ता जीवन को पहुंचाता है। इस रास्ते पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सचेत रहो, जो हैं तो फाड़ खाने वाले भेड़िए, लेकिन भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। इन लोगों के फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल पैदा करता है और खराब पेड़ खराब फल पैदा करता है। अच्छा पेड़ खराब फल नहीं ला सकता, ना ही खराब पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हर एक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता, काटा और आग में फेंका और जला दिया जाता है। इस तरह तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। हर एक जन जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है, परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा, लेकिन वही जो स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है उसमें प्रवेश पाएगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या हमने आपके नाम से पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर संदेश नहीं दिया, दुष्ट आत्माओं को नहीं खदेड़ा और बहुत से चमत्कार के काम नहीं किए? मेरा तुमसे कभी परिचय हुआ ही नहीं था, मेरे सामने से दूर हो जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर वैसा ही करता है जैसा मैंने सिखाया है, वो उस बुद्धिमान इंसान की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। पानी बरसा, बाढ़ आई, हवाओं के थपेड़े पड़े, उसके बावजूद वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो चट्टान पर बनाया गया था। हर एक जन जो मेरी बातों को सुनकर उसके अनुसार चलता नहीं, एक ऐसे बेवकूफ इंसान की तरह है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। पानी बरसा, बाढ़ आई और तेज हवाओं के थपेड़े उस घर पर पड़े और वो घर धराशायी हो गया।
जब यीशु ये सब बातें कह चुके तो लोग सुनकर बहुत आश्चर्य से भर गए, क्योंकि वह उन लोगों को बड़े अधिकार से सिखाया करते थे, ना कि उनके शिक्षकों की तरह। मत्ती अध्याय 8। जब यीशु उस पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उनके साथ चल पड़ी। एक कुष्ठ रोगी ने पास आकर यीशु को प्रणाम करते हुए कहा,
हे प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे ठीक कर सकते हैं।
यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छूते हुए कहा,
मैं चाहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ।
उस व्यक्ति का कुष्ठ रोग तुरंत ठीक हो गया। यीशु ने उससे कहा,
देखो, बगैर किसी को बताए पहले पुरोहित के पास जाकर अपने आप को दिखाओ, उस चढ़ावे को भी चढ़ाओ, ताकि उनके लिए गवाही हो।
जब वे कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार ने उनके पास आकर विनती की,
प्रभु जी,
मेरा नौकर मेरे घर में लकवे की बीमारी से पीड़ित है।
यीशु ने उससे कहा,
आकर मैं उसे अच्छा कर दूंगा।
सुबेदार ने जवाब दिया,
हे प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरी छत के नीचे आए, आप सिर्फ मुंह से कह दीजिए तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। मैं भी तो अधिकारी के अधीन हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं किसी से कहता हूँ उधर जाओ तो वो जाता है, जब किसी से कहता हूँ इधर आओ तो वो आता है, जब अपने नौकर से कहता हूँ ये करो तो वो वैसा करता है।
यह सुनकर यीशु ने अचंभा करते हुए अपने साथ चलने वाले लोगों से कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इसराइलियों में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं देखा। और मैं तुमसे कहता हूँ, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, लेकिन राज्य की संतान बाहर अंधेरे में डाल दी जाएगी, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा।
तब यीशु ने सुबेदार से कहा,
जाओ, जैसा तुम्हारा भरोसा है वैसा ही तुम्हारे लिए हो।
और उसका नौकर उसी वक्त ठीक हो गया। यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को बुखार में पड़े देखा। यीशु ने उसका हाथ छुआ और उसका बुखार उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब शाम हुई तब वह उसके पास बहुत से ऐसे लोगों को ले आए जिनमें भूत प्रेत थे। यीशु ने उन भूत प्रेतों को मात्र अपने शब्द से निकाल दिया और सब बीमारों को ठीक किया, ताकि जो बात यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहलवाई गई थी वह पूरी हो कि
यीशु ने खुद ही अपने ऊपर हमारी कमजोरियों को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया।
यीशु ने अपने चारों तरफ एक बड़ी भीड़ को देखकर उन्हें यह हुक्म दिया कि वह झील के उस पार चले जाएं। तभी एक धार्मिक गुरु ने आकर यीशु से कहा,
गुरुजी, आप जहां कहीं जाएंगे मैं भी आपके साथ रहूंगा।
यीशु ने उससे कहा,
लोमड़ियां तो बिलों में रहती हैं, चिड़िया घोंसले में, लेकिन परमेश्वर के बेटे के पास सिर रखने तक की जगह नहीं है।
यीशु के किसी शिष्य ने उनसे कहा,
प्रभु, मेरे पिताजी का देहांत होने के बाद मैं आपके साथ हो लूंगा।
यीशु ने उनसे कहा,
मेरे साथ आ जाओ, और जो लोग आत्मिक रीति से मरे हुए हैं उन्हीं के लिए ये काम छोड़ दो।
जब वे नाव पर चढ़े तो उनके शिष्य भी उनके साथ नाव पर सवार हो गए। कुछ ही समय के बाद जब यीशु सो रहे थे, एक ऐसा बड़ा तूफान आ गया कि नाव लहरों से डोलने लगी। तब उन्होंने उसके पास आकर उन्हें जगाते हुए कहा,
यीशु जी, हमें बचाइए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे।
यीशु ने उनसे कहा,
हे कम विश्वास वालों, तुम डर क्यों रहे हो?
तब यीशु ने उठकर आंधी और पानी को जैसे ही डांटा, सब कुछ शांत हो गया। शिष्य अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा इंसान है कि आंधी और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। जब यीशु उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचे तो दो व्यक्ति जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उन्हें मिले। वे इतने भयंकर थे कि उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजर सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा,
हे परमेश्वर के बेटे, हमें आपसे क्या लेना देना? क्या समय पूरा होने से पहले ही आप हमें दुख देने आए हैं?
कुछ ही दूरी पर वहाँ एक सूरों का झुंड चर रहा था, इसलिए दुष्ट आत्माओं ने यह याचना की कि अगर वह उनको निकालते भी हैं तो उन्हें वहाँ चरते हुए सूरों में भेज दें। यीशु ने जवाब में कहा,
निकल जाओ।
उन दोनों आदमियों में से निकलते ही दुष्ट आत्माएं उन सूरों में चली गईं। सूरों की देखरेख करने वाले भागकर शहर में आ गए। वहां उन्होंने लोगों को पूरी घटना बताई, यह भी कि दुष्ट आत्माओं से बंधे आदमियों के साथ क्या हुआ। यह सुनकर पूरा शहर यीशु से मिलने के लिए उमड़ पड़ा। यीशु को देखते ही उन्होंने उससे कहा कि हमारे यहां से कहीं और चले जाएं। मत्ती अध्याय 9। फिर यीशु एक नाव पर बैठकर झील के उस पार अपने गांव जा पहुंचे। तभी लोग चारपाई पर लकवे से पीड़ित एक व्यक्ति को उनके पास लाए। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर अपंग व्यक्ति से कहा,
बेटा हिम्मत रखो, तुम्हारे गुनाहों की माफी तुम्हें मिल चुकी है।
उनमें से कुछ विद्वानों ने आपस में कहा,
ये इंसान तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है।
उनके विचारों को जानकर यीशु ने कहा,
तुम अपने मन में बुरा क्यों सोच रहे हो? क्या कहना आसान है, ये कि तुम्हारे सारे पाप माफ हुए या उठो और चलने लगो, लेकिन इसलिए कि तुम ये जान लो, परमेश्वर के बेटे को इस दुनिया में पापों को माफ करने का अधिकार है।
इसके बाद ही यीशु ने उस अपंग इंसान से कहा,
उठो, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चले जाओ।
वह तुरंत उठकर अपने घर चला गया। जब भीड़ ने यह देखा तो आश्चर्य से भरकर उस परमेश्वर की बड़ाई करने लगी जिन्होंने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया था। वहां से निकलने के बाद यीशु ने मत्ती नामक एक व्यक्ति को टैक्स ऑफिस में बैठे देखा। उससे यीशु ने कहा,
मेरे साथ आओ।
वह तभी उठा और यीशु के साथ हो लिया। अब जब यीशु घर में खाना खाने बैठे हुए थे, बहुत से टैक्स लेने वाले और दुष्ट लोग यीशु और उनके शिष्यों के साथ आकर बैठे। जब फरीसियों ने देखा तो शिष्यों से कहा,
तुम्हारे गुरु टैक्स लेने वालों और दुष्टों के साथ खाना क्यों खाते हैं?
जब यीशु ने यह सुना तो उनसे कहा,
जो स्वस्थ हैं उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उन्हें जो बीमार होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। जाओ और इसका मतलब सीखने की कोशिश करो। मैं तरस चाहता हूँ, कुर्बानी नहीं, क्योंकि मैं धार्मिक लोगों को नेवता देने नहीं आया हूँ, लेकिन इसलिए कि पापियों का बदलाव हो।
तब यहुन्ना के शिष्य यीशु के पास आकर कहने लगे,
ऐसा क्यों है कि हम और फरीसी अक्सर उपवास करते हैं लेकिन आपके शिष्य ऐसा नहीं करते?
तब यीशु ने उत्तर में कहा,
क्या दूल्हे के रहते दूल्हे के दोस्त विलाप कर सकते हैं? लेकिन वे दिन आने वाले हैं जब दूल्हा उनसे दूर किया जाएगा और वे उपवास करेंगे। कोई भी व्यक्ति पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि ऐसा करने से पैबंद पुराने कपड़े को खींच लेगा और वो और ज्यादा फट जाएगा। लोग तुरंत निकाला हुआ अंगूर का रस पुराने चमड़े की थैलियों में नहीं भरते हैं, ऐसा करने से वे थैलियां फट जाती हैं और अंगूर का रस बह जाता है और थैलियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन नया अंगूर का रस नई थैलियों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं।
जबकि यीशु ये बातें कह ही रहे थे कि देखो, एक प्रधान ने आकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा,
मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन चलकर अपना हाथ उस पर रखें तो वह जिंदा हो जाएगी।
यीशु उठकर अपने शिष्यों को संग लेकर उसके साथ चल पड़े। इसी बीच एक महिला ने, जिसे 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, पीछे से आकर उनके पहरावे के छोर को छू लिया। वे अपने आप से कहा करती थी,
अगर मैं उनके कपड़ों को ही छू लूं तो अच्छी हो जाऊंगी।
लेकिन यीशु ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उससे कहा,
बेटी हिम्मत रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अच्छा कर दिया है।
उसी क्षण से वह महिला अच्छी हो गई। जब यीशु उस प्रधान के घर में पहुंचे तो वहां बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखकर कहा,
किनारे हटो, लड़की मरी नहीं है लेकिन सो रही है।
यह सुनते ही वे लोग यीशु पर हंसने लगे। लेकिन जब भीड़ निकाल दी गई तो उन्होंने अंदर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। इस बात की खबर उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़े तो दो अंधे उनके पीछे ये पुकारते हुए चले,
हे दाऊद के वंशज, हम पर दया करें।
जब वे घर में पहुंचे तो वे अंधे उनके पास आए और यीशु उनसे बोले,
क्या तुम्हें ये विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ?
उन्होंने यीशु से कहा,
जी हाँ प्रभु।
तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा,
तुम्हारे विश्वास के अनुपात में तुम्हारे लिए हो।
उसी समय उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उन्हें सख्त हुक्म देकर कहा,
सावधान, किसी को भी ये बात मालूम ना हो।
लेकिन उन्होंने निकलकर सारे देश में यीशु के नाम को फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उनके पास ले आए। जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ ने हैरान होकर कहा,
इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया।
लेकिन फरीसियों ने कहा,
यीशु तो दुष्ट आत्माओं के मुखिया की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं।
यीशु सब नगरों और गांवों में जाकर उनकी सभाओं में उपदेश देते और परमेश्वर के शासन के बारे में बताते रहे। वहां पर वे हर तरह की बीमारियों और कमजोरियों को दूर करते रहे। जब उन्होंने भीड़ को देखा तो उनके दिल में करुणा उमड़ आई, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह थे जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं था। वे व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
पके हुए खेत तो बहुत हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वो फसल काटने मजदूरों को भेजे।
मत्ती अध्याय 10। फिर यीशु ने अपने 12 शिष्यों को पास बुलाकर उन्हें गंदी आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालने के साथ साथ वे सब तरह की बीमारियों और कमजोरियों को दूर करें। 12 प्रेरितों के नाम हैं, शिमोन पत्रस, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यहुन्ना, फिलिपुस, बर्तुलमे, थोमा और टैक्स लेने वाला मत्ती, हल्फे का बेटा याकूब और तद्दे, शमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया था। इन 12 को यीशु ने यह हुक्म दिया था कि
गैर यहूदियों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी इलाके में दाखिल ना हो, लेकिन इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। जाते जाते लोगों को ये बताना कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जिलाओ, कुष्ठ रोगियों को अच्छा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो भी। अपने झोले में सोना ना रुपा ना तांबा रखना। यात्रा के लिए ना झोली रखो, ना 2 जोड़ी कमीज, ना जूते और ना ही लाठी, क्योंकि मेहनत करने वाले की जरूरत पूरी होनी चाहिए। जिस किसी गांव में जाओ तो मालूम करो कि वहां कौन तुम्हें ग्रहण करता है। जब तक तुम गांव ना छोड़ो, इसी व्यक्ति के यहां रहना। उसके घर में दाखिल होते ही उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग लायक होंगे तो तुम्हारा आशीर्वाद उन तक पहुंचेगा, लेकिन अगर वे लायक ना हो तो तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें अपनाएगा नहीं और तुम्हारी बात नहीं मानेगा, उस घर या उस शहर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इंसाफ के दिन सदोम और अमोरा की हालत उस शहर से ज्यादा सहने के लायक होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बनो। लेकिन लोगों से संभल कर रहना, इसलिए कि वे तुम्हें सभा के सुपुर्द कर देंगे। वे अपने आराधनालय में तुम्हें चाबुक से मारेंगे। तुम मजिस्ट्रेट और राजाओं के सामने मेरी खातिर लाए जाओगे, ताकि उनके और गैर यहूदियों के लिए गवाह ठहरो। लेकिन जब वे तुम्हें सुपुर्द करें तो क्या और कैसे बोलेंगे ये सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हें क्या कहना चाहिए ये उसी पल तुम्हें बता दिया जाएगा। इसलिए कि बोलने वाले तुम नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता का आत्मा है जो तुम में से बोलता है। और भाई अपने भाई को और पिता अपने बच्चों को मारे जाने के लिए सौंपेंगे। बच्चे अपने पिता के खिलाफ बलवा करेंगे और उनकी मौत का कारण बनेंगे। मेरे नाम की खातिर सब लोग तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन जो आखिर तक टिका रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। जब वे तुम्हें एक शहर में सताएं तो दूसरे शहर को भाग जाना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसके पहले कि तुम इसराइल के सभी शहरों में जा पाओ, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। शिष्य अपने गुरु से बढ़कर नहीं है, ना ही नौकर अपने मालिक से। शिष्य के लिए इतना ही काफी है कि वो अपने गुरु की तरह हो और नौकर अपने मालिक की तरह। अगर उन्होंने घर के मालिक को बालजबूल कहा है तो जो उनके परिवार के हैं उन्हें और बहुत कुछ क्यों नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ भी ढका नहीं है जो रोशनी में नहीं आएगा, या किया गया है जो जाना नहीं जाएगा। मैं जो कुछ अंधेरे में तुमसे कहूं उसे रोशनी में बताना, जो कुछ तुम कानों में सुनो उसे घर के ऊपर से चिल्लाना। उनसे मत डरना जो देह को बर्बाद कर सकते हैं लेकिन वे आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सिर्फ उनसे डरना जो देह और आत्मा दोनों ही को नरक में डाल सकते हैं, अर्थात परमेश्वर। क्या एक सिक्के में दो गराया नहीं बिकती हैं? फिर भी तुम्हारे पिता के बिना जाने उनमें से एक भी जमीन पर नहीं गिरती है। इसी तरह से तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं, इसलिए डरना नहीं। गरेयों से बढ़कर तुम्हारी कीमत है। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने मान लूंगा। इसलिए जो कोई लोगों के सामने मेरा इनकार करता है मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। ऐसा मत समझो कि इस दुनिया में मेरे आने से रिश्तेदारों में आपसी संबंध सदैव अच्छे होंगे, नहीं, लेकिन मेरी वजह से लोगों में आपस में फूट पड़ जाएगी। मेरी वजह से बाप बेटे की, बेटा बाप की खिलाफत करेगा, माँ बेटी की, बेटी माँ की, सास बहू की और बहू सास की खिलाफत करेगी। इंसान के दुश्मन उसके घर के लोग ही होंगे। जो कोई मुझसे ज्यादा अपने पिता या माता को चाहता है वो मेरे काम का नहीं है। जो मुझसे ज्यादा अपने बेटे या बेटी को चाहता है वो भी मेरे लायक नहीं है। जो कोई अपने क्रूस को उठाकर मेरे मुताबिक जिंदगी नहीं बिताता है वो भी मेरे काम का नहीं है। जो व्यक्ति अपने लिए ही जीना चाहता है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, और जो मेरे वास्ते अपनी जिंदगी कुर्बान करेगा वो उसे पा लेगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे अपनाता है वो मेरे भेजने वाले को अपनाता है। जो एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता की तरह सम्मान देता है वो भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाता है। मैं सच कहता हूं कि जो कुछ ना समझे जाने वाले लोगों को ये जानते हुए कि वे मेरे शिष्य हैं एक प्याला ठंडा पानी दे वो अपने पुरस्कार से चूकेगा नहीं।
मत्ती अध्याय 11। अपने 12 शिष्यों को आज्ञा देने के बाद यीशु उनके शहरों और गांव में सिखाने के लिए चल पड़े। यीशु के कामों के बारे में जब यूहन्ना ने जेल खाने में सुना तो अपने 2 शिष्यों को पूछताछ के लिए भेजा। यूहन्ना के शिष्यों ने उससे पूछा,
क्या आप ही वो हैं जो आने वाले थे, या हम किसी दूसरे का इंतजार करें?
यीशु ने जवाब में कहा,
जो कुछ तुमने सुना और देखा है जाकर बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और गरीबों को खुशी की खबर सुनाई जाती है। आशीषित व्यक्ति वो है जो मेरी वजह से ठोकर ना खाए।
यूहन्ना के शिष्य जाने ही वाले थे कि यीशु भीड़ को यूहन्ना के बारे में बताने लगे।
तुम जंगल में क्या देखने गए थे, हवा से हिलाए जाने वाले सरकंडे को? लेकिन तुम देखने क्या गए थे, बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए इंसान को? देखो, जो लोग बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं वे राजमहल में रहते हैं। लेकिन तुम देखने क्या गए थे, एक नबी को? हां, मैं तो कहूंगा कि एक नबी से ऊंचे इंसान को, क्योंकि इसी इंसान के बारे में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे पास भेजता हूं, वो तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगा। मैं सच कहता हूं, इस संसार में जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर आज तक कोई नहीं हुआ है, लेकिन जो कोई स्वर्ग के राज्य में सबसे कम है वो उससे कहीं ज्यादा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आज तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है, और बलवान उसे जोर लगाकर ले लेते हैं। यूहन्ना तक के सभी नबियों और नियम शास्त्र ने इन बातों के बारे में पहले ही से कह दिया था, अगर तुम इसे मानो तो यही एलिया है जो आने वाला था, जो सुनना चाहे वो सुने। लेकिन इस पीढ़ी की तुलना मैं किससे करूं? ये लोग उन बच्चों की तरह हैं जो बाजारों में बैठकर अपने साथियों को पुकारते रहते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई लेकिन तुम नहीं नाचे, हमने तुम्हारे लिए विलाप किया लेकिन तुम ना रोए। यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, लेकिन उस पर आरोप ये लगाया गया कि उसमें दुष्टात्मा है। मैं एक आम इंसान की तरह खाता पीता हूँ तो मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मैं पेटू, शराबियों, टैक्स इकट्ठा करने वालों और दुष्ट लोगों का साथी हूँ।
तब यीशु उन शहरों की उल्लाना करने लगे क्योंकि उन्होंने वहां कई चमत्कार किए थे और फिर भी उन लोगों ने अपने मन नहीं बदले थे।
खुराजीन, तुम पर हाय। बैतसैदा, तुम पर हाय, क्योंकि जो अद्भुत काम तुम्हारे यहाँ किए गए अगर सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उन्होंने बहुत पहले अपना मन बदल लिया होता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि इंसाफ के समय सूर और सैदा के लोगों की हालत ज्यादा सहने लायक होगी, और तुम कफरनहूम के लोग जो घमंड की ऊंचाइयों पर हो नरक की निचाई तक लाए जाओगे, क्योंकि जो चमत्कार तुम्हारे बीच में किए गए अगर वे सदोम में किए जाते तो वो शहर आज तक बना रहता। लेकिन मैं तुमसे यकीनन कहना चाहता हूं कि इंसाफ के दिन सदोम के लोगों की हालत तुम्हारी हालत से ज्यादा बर्दाश्त करने लायक होगी।
उसी समय यीशु ने कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी पिताजी, मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने इन बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा है लेकिन शिशुओं से नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बात आपको पसंद आई। सब बातें मेरे पिता ने मुझे सुपुर्द कर दी हैं। पिता के अलावा बेटे को कोई नहीं जानता, बेटे को छोड़कर पिता को भी कोई नहीं जानता, और वे लोग ही जानते हैं जिन पर बेटा जाहिर करता है। तुम सभी जो मेहनत करते और भारी बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। तब तुम अपने मन में सुकून पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ फायदेमंद और बोझ हल्का है।
मत्ती अध्याय 12। एक दिन यीशु सबत के दिन अनाज के खेतों में से होकर जा रहे थे। भूख लगने की वजह से यीशु के शिष्य बालों को तोड़ तोड़ कर दानों को खाने लगे, लेकिन फरीसियों ने देख कर कहा,
देखिए यीशु, आपके शिष्य वही कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना सही नहीं है।
लेकिन यीशु ने जवाब में कहा,
क्या तुमने ये पढ़ा नहीं है कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तब उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर के घर में जाकर उसने और उसके साथियों ने वो रोटी खाई जिसे सिर्फ याजक लोगों को खाने की आजादी थी। या क्या तुमने नियम शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि अगर सबत के दिन प्रार्थना भवन में याजक सबत को तोड़े तो भी निर्दोष ठहरते हैं? लेकिन मैं तुम्हें ये कहता हूं कि यहां जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो प्रार्थना भवन से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुमने इन शब्दों मैं कुर्बानी नहीं दया चाहता हूं का मतलब समझ लिया होता तो तुमने बेगुनाह को दोषी ना ठहराया होता, क्योंकि मैं सब्बत के भी ऊपर हूं।
वहां से जाने के बाद वह आराधनालय में पहुंचे। वहां पर एक आदमी था जिसका हाथ सूख चुका था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए पूछा,
क्या सब्बत के दिन में किसी को स्वस्थ कर देना जायज है?
यीशु ने उत्तर दिया,
मान लो तुम में से किसी के पास एक भेड़ है और सब्बत के दिन किसी गड्ढे में गिर जाती है, क्या उसे तुम बाहर नहीं निकालोगे? मनुष्य की कीमत भेड़ से कितनी बढ़कर है, इसलिए ये जायज है कि सब्बत के दिन भलाई की जाए।
तब यीशु ने उस व्यक्ति से कहा,
अपने हाथ को आगे बढ़ाओ।
उसने वैसा ही किया और उसका सूखा हाथ दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। इसके बाद ही फरीसियों ने बाहर जाकर यीशु के खिलाफ एक सभा बुलाई ताकि उन्हें बर्बाद करने की योजना बनाए। यह मालूम होते ही यीशु वहां से चले गए। एक बड़ी भीड़ भी उनके साथ हो ली और उन सभी को उन्होंने ठीक कर दिया। उन्होंने लोगों को यह भी कहा कि वे उनके बारे में अन्य लोगों को ना बताएं, ताकि यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा जो कुछ भी कहा गया था वह पूरा हो। वह ये कि मेरे प्यारे सेवक और प्रिय को देखो, जिसको मैंने चुना है और जिससे मैं खुश हूँ। मैं अपनी आत्मा को उस पर रखूंगा और वह गैर यहूदियों को न्याय की खबर देगा। वह ना झगड़ा करेगा, ना चिल्लाएगा, ना ही सड़कों पर कोई मनुष्य उसकी आवाज सुनेगा। जब तक वह जीत का फैसला ना सुना दे, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना ही टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा। गैर यहूदी उसके नाम पर भरोसा रखेंगे। एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित अंधे और गूंगे आदमी को यीशु के पास लाया गया और यीशु ने उसे अच्छा कर दिया, इसलिए वह बोलने और देखने लगा। सभी लोग आश्चर्य से भर कर कहने लगे,
क्या यह दाऊद के वंश के नहीं है?
फरीसियों ने यह सुनकर कहा,
यह व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के प्रधान बेलजबूल के बिना मदद के दुष्ट आत्माएं निकाल ही नहीं सकता।
यीशु ने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा,
जिस राज्य में एकता नहीं है अपनी बर्बादी का कारण बनता है। जिस शहर या घर में भी एकता नहीं है वो स्थिर नहीं रह सकता। अगर शैतान को निकालने लगा तो वो अपना ही दुश्मन बन गया, ऐसे में उसका शासन कैसे बना रहेगा? अगर मैं बाल जबूल की मदद से दुष्ट आत्माएं निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे उन्हें कैसे निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारे न्यायदाता होंगे। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के आत्मा की मदद से दुष्ट आत्माएं निकालता हूं तब तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। नहीं तो कोई एक ताकतवर आदमी के घर में घुसकर उसके घर की चीजें कैसे लूट सकता है? जब तक कि वो ताकतवर आदमी को बांध ना ले तब वो उसके घर को लूट लेगा। जो मेरी तरफ नहीं है वो मेरे खिलाफ है, और जो बटोरता नहीं है वो बिखराता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, हर तरह की दुष्टता और बुराई माफ की जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बुराई माफ नहीं की जाएगी। जो कोई मेरे खिलाफ कुछ कहता है वो माफी पाएगा, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ कहता है वो ना इस दुनिया में और ना ही आने वाली दुनिया में माफी पाएगा। अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को बुरा कहो तो उसके फल को भी बुरा कहो, क्योंकि फल से ही पेड़ के अच्छे बुरे की पहचान होती है। हे सांप के बच्चों, तुम दुष्ट होने के बावजूद अच्छी बातें कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मुंह से वही बाहर आता है जो मन में भरा होता है। भला मनुष्य अपने भीतर के अच्छे खजाने में से अच्छी बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने बुरे खजाने में से बुरी बातें निकालता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इंसाफ वाले दिन में लोग अपने कहे हर एक बेकार शब्द का हिसाब देंगे, क्योंकि तुम अपनी कही हुई बातों ही से निर्दोष ठहराए जाओगे या दोषी ठहराए जाओगे।
तब कुछ धर्मगुरु और फरीसियों ने उत्तर में कहा,
गुरुजी, हम आपकी ओर से एक अद्भुत चिन्ह देखना चाहते हैं।
लेकिन यीशु ने जवाब में कहा,
दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह देखना चाहती है, लेकिन नबी योना को छोड़कर और कोई चिन्ह उन्हें नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से योना एक बड़ी मछली के पेट में 3 रात 3 दिन था, उसी तरह मैं भी पृथ्वी के भीतर 3 रात 3 दिन बिताऊंगा। इंसाफ के दिन नीनवे के लोग खड़े होकर इस पीढ़ी के लोगों के ऊपर दोष लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने योना की बातों को सुनकर मन बदल लिया था। देखो,
यहाँ पर वो खड़ा है जो योना से कहीं बढ़कर है। इंसाफ के समय दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ खड़ी होकर दोष लगाएगी, क्योंकि वो पृथ्वी के एक छोर से इसलिए आई थी ताकि सुलेमान की बुद्धि की बातें सुने। देखो, यहाँ पर वो खड़ा है जो सुलेमान से भी कहीं बढ़कर है। लेकिन गंदी आत्मा एक इंसान के अंदर से निकल जाती है तो आराम पाने के लिए सुखी जगहों में घूमती फिरती है, लेकिन उसे जगह नहीं मिलती है। तब वो कहती है कि मैं वापस अपने उसी घर में चली जाऊंगी जहां से निकलकर आई थी। जब वो वहां पहुंचती है तो अपने घर को साफ सुथरा सजा सजाया और खाली पाती है। तब वो जाकर अपने से ज्यादा दुष्ट सात और गंदी आत्माओं को लाकर अपने इस पुराने घर में समा जाती है। इस इंसान की बात की हालत पहले की हालत से बदतर हो जाती है। ऐसा ही इस दुष्ट पीढ़ी के साथ होगा।
जब लोगों से बातचीत कर ही रहे थे तभी उनकी मां जी और भाई बाहर ही खड़े हुए उनसे बातचीत का मौका ढूंढ रहे थे। किसी ने उनसे कहा,
सुनिए, आपकी मां जी और आपके भाई बाहर खड़े आपसे बातें करने के लिए रुके हैं।
लेकिन यीशु ने उनसे कहा,
मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं?
अपने हाथों को अपने शिष्यों की तरफ बढ़ाते हुए यीशु ने कहा,
ये है मेरी माताएं, ये है मेरे भाई। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है वही मेरा भाई, बहन और माँ है।
मत्ती अध्याय 13। उसी दिन यीशु घर से निकले और जाकर झील के किनारे बैठ गए, और क्योंकि एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई इसलिए वह एक नाव पर जाकर बैठ गए। पूरी भीड़ तट पर ही खड़ी रही और यीशु दृष्टांत देकर उन्हें बहुत कुछ सिखाते हुए कहने लगे,
एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। ऐसा करते समय कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां ज्यादा मिट्टी नहीं थी और तुरंत उनके अंकुर निकल आए क्योंकि वे मिट्टी की सतह ही पर थे। लेकिन जैसे ही धूप निकली वे जलने के कारण मुरझा गए क्योंकि उन्होंने जड़ तो पकड़ी नहीं थी। कुछ झाड़ियों के बीच गिरे और झाड़ियों की बढ़त की वजह से वे बढ़ ना सके। लेकिन बाकी बीज अच्छी जमीन पर गिरे और फलवंत हो गए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना फलवंत हो गए। जो सुनना चाहे वो सुने।
शिष्यों ने आकर यीशु से पूछा,
अब दृष्टांतों में उनसे क्यों बातें करते हैं?
यीशु ने जवाब में कहा,
इसलिए कि स्वर्ग के राज्य की छिपी बातों को समझने की योग्यता तुम में है, लेकिन ये योग्यता उन्हें नहीं दी गई है। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास भरपूरी से होगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बातें करता हूं, क्योंकि देखने के बावजूद वे अंधे बनते हैं, सुनने के बावजूद वे ना ही सुनते और ना समझते हैं। यशाया नबी की वो भविष्यवाणी उनमें पूरी होती है जो कहता है, तुम सुनने के बावजूद समझोगे नहीं, तुम देखते तो रहोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और ये कानों से ऊंचा सुनने लगे हैं। उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है ताकि आंखों से देखने, कानों से सुनने और मन से समझ लेने पर उनमें बदलाव ना हो जाए और मुझसे मुक्ति ना पा लें। लेकिन तुम्हारी आंखें आशीषित हैं क्योंकि वे देखती हैं, तुम्हारे कान आशीषित हैं क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से नबी और धर्मी उन बातों को देखना मांगते थे जो तुम देख रहे हो, लेकिन देख ना सके। सुनना मांगते थे जो तुम सुन रहे हो, लेकिन सुन ना सके। इसलिए बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्य की बातें सुनता है और समझता नहीं तो दुष्ट आत्मा आकर
उसके मन में बोई हुई बातों को छीन ले जाता है। ये वही है जिसने रास्ते पर गिरे बीजों को अपनाया था, लेकिन पथरीली जमीन पर बीजों को अपनाने वाला वो है जो सुनता है और तुरंत खुशी से अपना लेता है, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत ना होने की वजह से थोड़ी देर ही बना रहता है। जब परमेश्वर की बातों को अपनाने की वजह से दबाव या सताव आता है, वो तुरंत लड़खड़ा जाता है। कांटेदार झाड़ी में गिरना उस व्यक्ति की तरफ इशारा है जो परमेश्वर की बातों को तो सुनता है, लेकिन इस दुनिया की फिक्र और धन का धोखा उन बातों को दबा देते हैं और वे बातें यों ही सूख जाती हैं। लेकिन अच्छी जमीन में बीजों का गिरना उस इंसान की तरफ इशारा है जो सुनकर समझता है, उसी में परमेश्वर की बातों का नतीजा दिखता है। कुछ लोग 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना फसल पैदा करते हैं।
यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत देते हुए कहा,
स्वर्ग का राज्य उस इंसान की तरह है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, लेकिन जब लोग सो रहे थे तभी उसके दुश्मन ने आकर गेहूं के खेत में जंगली दाने बोए और चला गया। जब बालें बढ़ने लगी और फसल दिखाई दी, तभी जंगली बालें भी दिखने लगी। उस मालिक के नौकरों ने आकर उससे कहा, श्रीमान जी, क्या आपने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए थे, तो ये जंगली बालें कहां से आ गईं? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम उन सब को निकाल फेंके? उसने कहा, नहीं, जब तुम जंगली बालों को निकालोगे तभी उनके साथ गेहूं की बालें भी उखड़ आएंगी, इसलिए फसल के काटे जाने तक दोनों को बढ़ने दो। फसल काटे जाने के समय मैं मजदूरों से कहूंगा, पहले जंगली बालों को जलाने के लिए उनके गट्ठे बना लो, लेकिन गेहूं को मेरे गोदाम में रखने के लिए इकट्ठा करो।
उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि
स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं।
उन्होंने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि
स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और धीरे धीरे वो सब खमीर हो गया।
ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहते थे, ताकि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि
मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो दुनिया की शुरुआत से गुप्त रही है प्रकट करूंगा।
तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आए और उनके चेलों ने उनके पास आकर कहा,
खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे।
यीशु ने उनको उत्तर दिया कि
अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य के पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और वे उनके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय क्षमा पाए लोग अपने पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वे सुन ले। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे अनंत के जाकर और सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक कीमती मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी?
उन्होंने उनसे कहा,
हाँ।
यीशु ने उनसे कहा,
इसलिए हर एक व्यक्ति जो स्वर्ग के राज्य का सदस्य बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है।
जब यीशु ये दृष्टांत कह चुके तो वहां से चले गए और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगे कि लोग चकित होकर कहने लगे कि इनको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले? क्या यह बड़ेई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शिमोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा,
भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं पाता।
और यीशु ने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत अद्भुत काम नहीं किए। मत्ती अध्याय 14। उस समय राजा हेरोदेस ने यीशु के बारे में सुना। उसने अपने सलाहकारों से कहा,
यह तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए उससे अद्भुत काम प्रकट होते हैं।
क्योंकि हेरोदेस राजा ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियास की वजह से उसे बंधवा कर जेल में डलवा दिया था, इसलिए कि यूहन्ना ने उससे कहा था,
यह जायज नहीं कि तुम अपने भाई की पत्नी को रखो।
वह उसे मरवा डालना चाहता था, लेकिन लोग यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते थे, इसीलिए वह लोगों से डरता भी था। जब हेरोदेस का जन्मदिन मनाया जा रहा था, हेरोदियास की बेटी ने उसके सामने नाचकर हेरोदेस को खुश किया, इसलिए उसने उसे मुंह मांगा इनाम देने का वायदा किया। अपनी माँ से इशारा पाकर लड़की ने एक थाली में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर की मांग की। इस मांग से राजा को बहुत दुख हुआ, फिर भी अपने वायदे को पूरा करने और बैठे हुए लोगों की वजह से उसने लड़की की मांग को पूरा करने का हुक्म दे दिया। उसने अपने लोगों को जेल में भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसे एक थाली में रखकर लड़की को दे दिया गया, और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। और यूहन्ना के शिष्यों ने आकर उसकी देह को लिया और दफनाने के बाद यीशु को भी बता दिया। यह सुनते ही यीशु एक नाव पर रवाना होकर सुनसान जगह को चले गए। जब लोगों को यह मालूम पड़ा तो शहरों से निकलकर यीशु से मिलने पैदल ही निकल पड़े, और यीशु ने बाहर एक बड़ी भीड़ को देखकर तरस खाया और उनके बीमारों को ठीक कर दिया। जब शाम हुई तो उनके शिष्य ये कहते हुए आए,
ये एक सुनसान जगह है और बहुत देर हो चुकी है, भीड़ को जाने दें ताकि वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद सके।
लेकिन यीशु ने शिष्यों से कहा,
ये ठीक नहीं कि वे जाएं, तुम ही उन्हें कुछ खाने के लिए दो।
उन्होंने उससे कहा,
यहाँ पर हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं।
यीशु ने कहा,
उन्हें मुझे दो।
तब यीशु ने लोगों को घास पर बैठ जाने के लिए कहा और 5 रोटियों और 2 मछलियों को हाथों में लेकर आकाश की तरफ देखते हुए धन्यवाद किया। यीशु रोटियों को तोड़ तोड़ कर चेलों को देते और चेले लोगों को देते गए। सभी ने भर पेट खाया और इसके बावजूद भी बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरे बच गए। महिलाओं और बच्चों को अगर ना भी गिने तो भी लगभग 5,000 पुरुष ही थे। यीशु ने तुरंत अपने शिष्यों को जबरदस्ती नाव पर चढ़ाया ताकि वे उनसे पहले झील के उस पार चले जाएं। इसी बीच वे लोगों को विदा करते रहे। वह लोगों को विदा करके परमेश्वर पिता से सहभागिता करने को अलग पहाड़ पर चले गए और शाम को वे वहां अकेले थे। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। तभी यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। शिष्य यीशु को झील पर चलते देखकर और घबरा कर चिल्ला उठे,
भूत भूत।
यीशु तुरंत बोल उठे,
हिम्मत बांधो, डरो मत, मैं हूँ।
पतरस ने जवाब दिया,
हे प्रभु, अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आऊं।
यीशु ने कहा,
आओ।
तुरंत पतरस नाव पर से उतरकर यीशु की तरफ जाने के लिए पानी पर चलने लगा, लेकिन वे हवा को देखकर डर गया और जैसे ही डूबने लगा वैसे ही चिल्ला उठा,
हे प्रभु, मुझे बचाइए।
यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा,
हे कम विश्वास वाले, तूने शक क्यों किया?
जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब वे नाव पर थे उन्होंने यीशु को दंडवत करते हुए कहा,
आप सचमुच में परमेश्वर के बेटे हैं।
वे सभी झील के पार उतरकर गनेसरत देश में पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें पहचान कर आसपास के सारे देशों में खबर दे दी और सब बीमारों को उनके पास लाए और उनसे विनती करने लगे कि वे सिर्फ अपने कपड़ों का छोर ही छूने दें। और जितने लोगों ने उन्हें छुआ वे सभी बिल्कुल अच्छे हो गए। मत्ती अध्याय 15। यरूशलेम से आए धार्मिक गुरु और फरीसी यीशु से कहने लगे,
आपके शिष्य बुजुर्गों से चले आ रहे रीति रिवाजों के मुताबिक क्यों नहीं करते? खाना खाने से पहले वे अपने हाथों को धोते ही नहीं।
लेकिन यीशु ने उत्तर में कहा,
तुम अपने रीति रिवाजों को पूरा करके परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने ये हुक्म दिया है, अपने पिता और माता की इज्जत करो, और ये भी कि जो अपने पिता और माता को शाप दे वो मार डाला जाए। लेकिन तुम कहते हो कि अपने माता पिता से ये कहना सही है, मुझे माफ करें, मैंने वो सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है जो मैंने आपको दे दिया होता। इस तरह तुम कहते हो कि उन्हें अपने माता पिता को इज्जत देने की जरूरत नहीं, इसलिए तुम अपनी रीति से परमेश्वर की बातों को टाल देते हो। इस प्रकार तुमने अपने रीति रिवाजों से परमेश्वर के हुक्मों को रद्द कर डाला है। तुम ढोंगियों, तुम्हारे बारे में यशाया ने सही नबूवत की थी, ये लोग अपने मुंह की बातों के द्वारा मेरे नजदीक आते हैं और अपने होठों से मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर है। वे बिना किसी मतलब के मेरी आराधना करते हैं और इंसानों की आज्ञाओं को सिद्धांत के रूप में सिखाते हैं।
भीड़ को बुलाकर यीशु ने कहा,
सुनो और समझो, जो इंसान के मुंह में जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो कुछ मुंह से बाहर आता है वो उसे अशुद्ध करता है।
तब यीशु के शिष्य आकर उनसे कहने लगे,
क्या आपको मालूम है कि आपकी कही हुई इन बातों से फरीसियों को बुरा लगा है?
लेकिन यीशु ने जवाब में कहा,
हर एक वो पौधा जिसे मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अगुए अंधा रास्ता दिखाने वाले हैं, और अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे।
तब पतरस ने पूछा,
हमें यह बात समझाइए।
यीशु ने कहा,
क्यों अब तक तुम्हें समझ नहीं है? क्या तुम ये नहीं समझते कि जो कुछ मुंह से जाता है पेट में चला जाता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन जो कुछ इंसान के भीतर से आकर मुंह से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। इंसान के अंदर से निकले गंदे ख्याल, हत्या, व्यभिचार, यौन अनैतिकता, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये बातें अशुद्ध करती हैं, लेकिन गंदे हाथों से खाना खाने से कोई अपवित्र नहीं होता।
तब यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाकों में गए। अचानक ही वहां से एक कनानी महिला आकर चिल्लाते हुए कहने लगी,
प्रभु, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम करो। मेरी बेटी बुरी तरह से दुष्ट आत्मा से पीड़ित है।
लेकिन यीशु ने कुछ नहीं कहा। उनके शिष्य ने आकर दुहाई देते हुए कहा,
उसे रफा दफा कीजिए, क्योंकि वे हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी हुई है।
लेकिन उत्तर में उन्होंने कहा,
इसराइल की खोई हुई भेड़ को छोड़कर मुझे किसी और की तरफ नहीं भेजा गया है।
लेकिन वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी,
हे प्रभु, मेरी सहायता करो।
यीशु ने उत्तर दिया कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उस स्त्री ने कहा,
सच है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है।
इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा,
हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो।
और उसकी बेटी उसी समय से स्वस्थ हो गई। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आए और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गए। और लोगों की भीड़ लंगड़ों, अंधों, गुंगों, टुंडों और बहुत से लोगों को लेकर उसके पास आए और उन्होंने यीशु के पांव पर डाल दिया और यीशु ने उन्हें ठीक किया। सो जब लोगों ने देखा कि गुंगे बोलते और टुंडे ठीक होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इसराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा,
मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं।
चेलों ने उनसे कहा,
हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें।
यीशु ने उनसे पूछा,
तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं?
उन्होंने कहा,
7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां।
तब यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देते गए और चेले लोगों को। सो सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए और खाने वाले स्त्रियों और बच्चों को छोड़ 4,000 पुरुष थे। तब वे भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गए और मगदन देश के सिवानों में आए। मत्ती अध्याय 16। फरीसियों और सदूकियों ने यीशु को परखने के लिए कहा,
हमें स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाइए।
यीशु ने उनसे कहा,
तुम शाम के समय कहते हो कि मौसम साफ रहेगा, क्योंकि आसमान में लाली छाई हुई है। सुबह के समय कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान को देखकर बता सकते हो कि मौसम का क्या होगा, लेकिन समयों और चिन्हों का रहस्य क्यों नहीं समझ पाते? इस युग के दुष्ट और व्यभिचारी लोग निशान ढूंढते हैं, लेकिन योना के निशान को छोड़कर कोई और निशान उन्हें नहीं दिया जाएगा।
इन सब बातों के कहने के बाद यीशु वहां से चले गए। शिष्य झील की दूसरी तरफ जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा,
देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचकर रहना।
वे सोचने लगे कि हम तो रोटी लाना भूल गए हैं। उनके मन की बात जानकर यीशु ने उनसे कहा,
हे कम विश्वास वाले लोगों, तुम आपस में ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए हो? क्या तुम्हें उन 5,000 के लिए 5 रोटियां याद नहीं हैं? और 4,000 की 7 रोटियों का क्या? बची रोटियों के कितने टोकरे तुमने उठाए थे? तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के बारे में नहीं कहा था? मैंने तो फरीसियों और सदूकियों के खमीर अर्थात उनकी शिक्षा के बारे में सावधान रहने को कहा था।
तब उनकी समझ में आया कि यीशु ने रोटी के खमीर की बात नहीं की थी, लेकिन फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा के बारे में सावधान रहने के लिए कहा था। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा,
बताओ, लोग मुझे क्या कहते हैं?
शिष्यों ने जवाब दिया,
कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या नबियों में से कोई एक,
यीशु ने उनसे पूछा,
लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो?
शिमोन पत्रस ने कहा,
आप जीवित परमेश्वर के बेटे मसीह हैं।
यीशु ने कहा,
हे शमौन, योना के बेटे, तुम आशीषित हो, क्योंकि तुमने अपने आप ये नहीं कहा है, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये तुम पर प्रकट किया है। मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तुम पत्रस हो, और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। अधोलोक के दरवाजे चर्च को हरा नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा।
तब यीशु ने शिष्यों को चिता कर कहा,
तुम किसी को मत बताना कि मैं मसीह हूं।
उसी समय से यीशु अपने शिष्यों को बताने लगे कि यह उनके लिए जरूरी है कि वह यरूशलेम को जाएं और प्राचीनों, महायाजकों और धर्म शिक्षकों के हाथ से बहुत दुख उठाकर मार डाले जाएं और तीसरे दिन जी उठें। यह सुनकर पत्रस यीशु को अलग ले जाकर यह कहते हुए गुस्सा करने लगा,
हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि आपके साथ कभी ऐसा हो।
यीशु ने तुरंत पत्रस की ओर फेरकर उससे कहा,
हे शैतान, मेरे सामने से दूर चले जाओ। तुम मेरे लिए ठोकर का कारण हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन इंसानों की बातों पर मन लगाते हो।
तब यीशु ने तो अपने शिष्यों से कहा,
अगर कोई मुझे अपनाना चाहता है तो उसे अपने आप से इनकार करके और अपने क्रूस को उठाकर जो मैं कहूं वही करना पड़ेगा। जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा। जो मुझ पर विश्वास करने की खातिर अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा वही उसे हमेशा के लिए बचा पाएगा। क्योंकि मनुष्य को क्या फायदा अगर वो पूरी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा ही को खो दे, या वो अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और तब हर इंसान को उसके कामों के मुताबिक मजदूरी मिलेगी। मैं तुमसे यकीनन कहता हूं कि यहां पर कुछ ऐसे लोग खड़े हैं कि जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते ना देख लें, मौत का स्वाद नहीं चखेंगे।
मत्ती अध्याय 17। 6 दिनों के बाद यीशु पत्रस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। उनकी मौजूदगी में ही उनका रंग रूप बदल गया। उनका चेहरा सूरज की तरह और कपड़े रोशनी की तरह सफेद हो गए। अचानक मूसा और एलिया यीशु से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तब पत्रस ने यीशु को उत्तर दिया,
प्रभु, हमारे लिए अच्छा है कि हम सब यहीं रहें। अगर आप इजाजत दें तो हम 3 तंबू बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलिया के लिए।
वह बोल ही रहा था कि अचानक एक उजले बादल की छाया ने आकर उन्हें ढक लिया। तभी वहां एक आवाज आई,
ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, उसी की सुनो।
जब शिष्यों ने यह सुना तो वे डर के मारे मुंह के बल गिर पड़े। यीशु ने आकर उन्हें छूते हुए कहा,
उठो और डरो मत।
जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो यीशु के अलावा और किसी को नहीं पाया। जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, यीशु ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा,
जब तक मनुष्य का पुत्र अर्थात मैं खुद मरे हुओं में से जी ना उठूं, किसी को ये दर्शन ना बताना।
यीशु के शिष्यों ने पूछा,
तब धार्मिक शिक्षक ये क्यों सिखाते हैं कि पहले एलिया आएगा?
यीशु ने जवाब में कहा,
इसमें कोई शक नहीं कि एलिया आकर सभी बातों को ठीक करेगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि एलिया आ चुका है, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं। उन्होंने उसके साथ मनमाना बर्ताव किया। इसी तरह से मनुष्य का पुत्र उनके हाथों दुख उठाएगा।
तब शिष्य समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कह रहे थे। जब वे सभी भीड़ के पास पहुंचे, एक आदमी ने आकर घुटने टेकते हुए कहा,
प्रभु, मेरे बेटे पर दया कीजिए, वो मानसिक रोगी है और बड़ी पीड़ा में है। वो कभी पानी में और कभी आग में गिर पड़ता है।
मैं आपके शिष्यों के पास उसे लाया था, लेकिन वे उसे ठीक नहीं कर पाए।
तब यीशु ने जवाब दिया,
अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, तुम्हारी कब तक सहूंगा, उसे मेरे पास ले आओ।
तब यीशु ने गंदी आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। उसी समय से वह बच्चा ठीक हो गया। फिर अकेले में शिष्य यीशु के पास आए और पूछा,
हम उस आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए?
यीशु ने उनसे कहा,
तुम्हारे अविश्वास की वजह से। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास सरसों के बीज के बराबर विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहाँ से वहाँ चले जाओ, तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। फिर भी इस तरह की आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती है।
जब वे गलील ही में थे, यीशु ने उनसे कहा,
मनुष्य के पुत्र को लोगों के हाथ पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा।
ये सुनकर वे गहरी उदासी में डूब गए। जब वे कफरनहूम आए तो जो प्रार्थना भवन का टैक्स लेते थे, उन्होंने आकर पत्रस से कहा,
क्या तुम्हारे गुरु प्रार्थना भवन का टैक्स नहीं देते हैं?
उसने कहा,
हाँ देते हैं।
घर में आने के बाद सबसे पहले यीशु ने बोलना शुरू किया,
तुम्हारा क्या ख्याल है, इस पृथ्वी के राजा टैक्स किससे लेते हैं, अपने बच्चों से या विदेशियों से?
पत्रस बोला,
विदेशियों से।
यीशु ने उससे कहा,
तब तो बच्चे बच गए, लेकिन हम उनके लिए ठोकर का कारण नहीं ठहरेंगे। झील में बंसी डालो और पहली पकड़ी हुई मछली को ले लो, उसका मुंह खोलते ही तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, मेरे और अपने लिए उसे टैक्स के रूप में दे देना।
मत्ती अध्याय 18। उस समय शिष्य ये कहते हुए यीशु के पास आए,
स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है?
यीशु ने एक छोटे बच्चे को अपने पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम बदलकर छोटे बच्चों की तरह ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए जो कोई इस छोटे बच्चे की तरह अपने आप को दीन करता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। और जो ऐसे किसी छोटे बच्चे को मेरे नाम में ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। लेकिन जो इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करने वाले किसी एक को चोट पहुंचाए, उसके लिए भला ये होगा कि एक चक्की का पत्थर उसकी गर्दन में बांधकर उसे समुद्र की गहराई में डाल दिया जाए। ठोकरों के कारण दुनिया पर हाय, ठोकरें तो लगेगी, लेकिन उस व्यक्ति पर हाय जिसके जरिए ठोकर लगती है। इसलिए अगर तुम्हारा हाथ या पैर तुम्हें ठोकर पहुंचाए तो काट कर अपने से दूर फेंक देना। बेहतर यह है कि तुम लंगड़े या अपंग स्वर्ग में प्रवेश करो, बजाय ये कि दो हाथों और दो पैरों के रहते हमेशा के लिए आग में डाले जाओ। अगर तुम्हारी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए तो इसे निकालकर अपने से दूर फेंक देना। ये अच्छा है अंधे होकर तुम जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम दो आंखों के साथ नरक की आग में डाले जाओ। ध्यान रखना कि इन छोटों में से किसी को नीचा ना समझना। मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत सदा मेरे पिता की उपस्थिति में रहते हैं। जो मुक्ति पाए हुए नहीं हैं, उन्हें बचाने में आया हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर एक आदमी के पास 100 भेड़े हैं, उनमें से एक भटक जाती है, तो क्या वो 99 को छोड़कर खोई हुई एक भेड़ को ढूंढने पहाड़ों पर नहीं जाता है और जब उसे पा लेता है? मैं सच कहता हूं कि वो खोई हुई भेड़ के लिए इतना खुश होता है जितना 99 के लिए नहीं होता है। इसी तरह से ये तुम्हारे स्वर्ग में रहने वाले पिता की इच्छा नहीं है कि इनमें से कोई भी छोटा खोने पाए। इसके बजाय अगर तुम्हारा भाई या बहन तुम्हारे खिलाफ बुरा करता है तो अकेले में जाकर उसको उसकी गलती बतलाओ। अगर वो तुम्हारी सुने तो तुमने उसको वापस पा लिया, अगर वो नहीं सुनता है
तो एक दो को भी अपने साथ ले जाओ। तब दो या तीन गवाहों के मुंह से हर बात का फैसला किया जाएगा। अगर वो चर्च की भी ना सुने तो उसे टैक्स जमा करने वाला और मूर्ति पूजक ही समझो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं फिर तुमसे कहता हूं कि अगर किसी विषय पर तुम में से दो जन एक मन होकर मांगे तो स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता के द्वारा वो मिल जाएगा। क्योंकि जहां कहीं मेरे नाम से दो या तीन लोग इकट्ठे होते हैं, वहां उनके बीच मैं हूं।
तब पतरस ने आकर कहा,
प्रभु, मेरे भाई या बहन के कितनी बार मेरे खिलाफ बुरा करने पर मैं उसे माफ करूं? क्या 7 बार?
यीशु ने उससे कहा,
मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 7 बार, लेकिन 7 के 70 गुना। इसलिए स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से की जा सकती है, जब वो अपने नौकरों के साथ अपने हिसाब किताब को करने लगा तो एक ऐसे व्यक्ति को उसके पास लाया गया जो 10,000 सिक्कों का कर्जदार था। क्योंकि वो कर्ज अदा नहीं कर सकता था, उसके मालिक ने हुक्म दिया कि उसे उसकी पत्नी और उसके बच्चों को बेचकर कर्ज अदा किया जाए। इसलिए नौकर ने गिरकर प्रणाम करते हुए कहा, मालिक, थोड़ा धीरज रखें, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तब उस नौकर के मालिक को तरस आया और उसने उसे जाने दिया। उसने कर्ज भी माफ कर दिया। उस नौकर के बाहर निकलने पर उसे साथी सेवक मिला जिसे उसको चांदी के 100 सिक्के देने थे। उसने उसका गला पकड़ते हुए कहा, जो कुछ तुझे मुझको देना है वो मुझे जल्दी दे। वो नौकर उसके पैरों पर गिरते हुए बोला, थोड़ा धीरज रखो, मैं सब वापस कर दूंगा। उसने ना मानी, लेकिन जब तक वो पैसा वापस ना कर दे उसे जेल की सजा दिलवा दी। जब उसके संगी साथियों ने देखा कि क्या किया गया है तो जाकर उसके मालिक को उस नौकर की करतूत बता दी। तब उसके मालिक ने उसको बुलाकर कहा, हे दुष्ट आदमी, मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारा सारा कर्ज माफ किया था, जैसे मैंने तुम पर दया की थी, क्या तुम्हें उस पर नहीं करनी चाहिए थी? उसके मालिक ने बड़े गुस्से से उसे सताने वालों के सपुर्द कर दिया ताकि जब तक वो सब कुछ चुका ना दे वहीं रहे। अगर तुम में से हर एक अपने मन से अपने उस भाई बहन को माफ ना करेगा जिसने तुमको दुख पहुंचाया है तो मेरे स्वर्गीय पिता भी तुमसे ऐसा ही बर्ताव करेंगे।
मत्ती अध्याय 19। यीशु ये बातें कहने के बाद गलील से चल पड़े। वहां से वह यर्दन के पार यहूदिया के इलाके में आए। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चल पड़ी और उन्होंने वहां पर उनको स्वस्थ किया। फरीसी भी यीशु को परखने के लिए आकर कहने लगे,
क्या ये एक इंसान के लिए जायज है कि वे अपनी पत्नी को किसी भी मुद्दे पर तलाक दे दे?
यीशु ने जवाब में उनसे कहा,
क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जैसे परमेश्वर ने उन्हें शुरुआत में पति पत्नी करके ठहराया, ये भी कहा, इस वजह से पुरुष अपने पिता और माता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और दोनों एक देह होंगे, इसलिए वे दोनों दो नहीं लेकिन एक देह होंगे। इस कारण जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग न करे।
उन्होंने यीशु से कहा,
फिर मूसा ने ये आज्ञा क्यों दी कि तलाक नामा देकर अलग हो जाए?
यीशु ने उनसे कहा,
तुम्हारे कठोर और हठीले मन की वजह से मूसा ने तुम्हें तलाक देने की अनुमति दी थी, लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। मैं कहता हूं, जो कोई यौन अनैतिकता के अलावा किसी और वजह से अपनी पत्नी को तलाक दे और किसी और से विवाह कर ले वो व्यभिचार करता है। जो कोई त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है।
यीशु के शिष्यों ने उससे कहा,
अगर ऐसा है तो विवाह करना बेकार है।
लेकिन यीशु ने उन लोगों से कहा,
सभी लोग अविवाहित नहीं रह सकते, सिर्फ वे जिन्हें ये दान दिया गया है। कुछ पैदाइशी नपुंसक हैं, कुछ को
लोगों ने नपुंसक बनाया है। कुछ लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो व्यक्ति इस स्थिति को अपना सकता है वो अपना ले।
तब यीशु के पास छोटे बच्चों को लाया गया ताकि यीशु उनके ऊपर अपने हाथों को रख कर प्रार्थना करें, लेकिन शिष्यों ने उन लोगों को डांटा। यीशु ने कहा,
छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बच्चों का सा स्वभाव रखने वाले लोगों का ही है।
यीशु ने अपने हाथ उन पर रखे और वहां से चल दिए। अचानक ही वहां एक आदमी आकर कहने लगा,
अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा अच्छा काम करूं?
यीशु ने उससे कहा,
तुम मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो? परमेश्वर को छोड़कर कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम जीवन पाना चाहते हो तो हुक्म मानो।
उसने कहा,
कौन सा हुक्म?
यीशु ने कहा,
तुम हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चुराना नहीं, झूठी गवाही मत देना, अपने माता पिता की इज्जत करना, और जितना प्यार खुद से करते हो उतना ही अपने पड़ोसी से करना।
नवजवान व्यक्ति ने यीशु से कहा,
ये सब तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, अब मेरे में क्या कमी है?
यीशु ने उससे कहा,
अगर सिद्ध बनना चाहते हो तो जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है वो गरीबों को दे दो, मेरे शिष्य बन जाओ और तुम्हें स्वर्ग में दौलत मिलेगी।
यह बात सुनकर वह नौजवान उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत अमीर था। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एक अमीर इंसान के लिए स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना मुश्किल है। मैं फिर तुमसे कहता हूँ, एक सुई के छेद में ऊंट का पार हो जाना आसान है, लेकिन एक अमीर इंसान के लिए परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो पाना मुश्किल है।
जब यीशु के शिष्यों ने यह बात सुनी तो वे आश्चर्य से भरकर कहने लगे,
तो मुक्ति कौन पा सकता है?
तब यीशु ने उनकी तरफ देखकर उनसे कहा,
इंसान से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।
तब पतरस ने जवाब दिया,
देखिए, आपके पीछे चलने के लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए हमें क्या मिलेगा?
और यीशु ने उन लोगों से कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम जितनों ने मेरी मान ली है, नई शुरुआत के समय जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा से सिंहासन पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का इंसाफ करेगा, तब तुम भी जो मेरे पीछे आए हो, तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हर एक वो जन जिसने घरों, भाइयों, बहनों, पिता, माता, पत्नी, बच्चों या जायदाद को मेरी खातिर छोड़ दिया है, 100 गुना प्रतिफल पाने के साथ ही हमेशा की जिंदगी पाएगा। परंतु कई जो पहले हैं वे पिछले, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे।
मत्ती अध्याय 20।
क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे गृहस्थ की तरह है जो बहुत सवेरे उठकर अपने अंगूर के बगीचे में काम करने के लिए मजदूर ढूंढने निकला। उनके साथ एक चांदी के सिक्के की दिन भर की मजदूरी तय होने के बाद उसने उन्हें काम पर लगा दिया। जब वो सुबह 9 बजे बाहर गया तो तमाम मजदूरों को बाजार में फालतू खड़े हुए देखा और उनसे भी कहा, तुम भी अंगूर के बगीचे में काम करने जाओ और मैं तुम्हें वाजिब मजदूरी दूंगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। दोपहर और तीसरे पहर जाकर उसने फिर वैसा ही किया। शाम 5 बजे फिर दूसरों को फालतू खड़े देखा और पूछा, तुम पूरे दिन यहां ऐसे ही क्यों खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, किसी ने भी हमें काम नहीं दिया। उसने उनसे कहा, तुम भी जाकर अंगूर के बगीचे में काम करो और तुम्हें मजदूरी दी जाएगी। शाम होने पर बगीचे के मालिक ने अपने मैनेजर से कहा, शुरू से आखिर तक आने वाले मजदूरों को बुलाकर मजदूरी दे डालो। जिन लोगों को 5 बजे काम पर लगाया गया था, चांदी का एक सिक्का दिया गया। जब वे लोग सामने आए जिन्हें सुबह से काम पर लगाया गया था, तो उन्हें भी चांदी का एक सिक्का दिया गया, जबकि वे ज्यादा मिलने की आशा लगाए हुए थे। मजदूरी मिलते ही वे मालिक की शिकायत ये कहकर करने लगे, जिन लोगों ने एक घंटा ही काम किया उन्हें भी वही मजदूरी दी गई है जो हम सभी को धूप में भारी काम करने पर मिली है। लेकिन उसने उत्तर दिया, दोस्त, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने ही एक चांदी के सिक्के में काम करना कबूल नहीं किया था? अपना हिस्सा लो और चल पड़ो। ये मेरी मर्जी है कि मैंने उन्हें भी उतना ही दिया है जितना तुम्हें दिया है। क्या ये वाजिब नहीं कि मैं अपने पैसे से जो चाहूं वो करूं? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मैं उदार मन का हूं? इसलिए जो पहले आए हैं वे ऊंचा पद नहीं पाएंगे, और जिनको कोई पूछता भी नहीं वे श्रेष्ठ होंगे।
यरूशलेम जाते समय यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अलग ले जाकर उनसे कहा,
देखो, हम लोग यरूशलेम जा रहे हैं। मनुष्य का पुत्र प्रधान पुरोहितों और शिक्षकों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे लोग उसे मार डालेंगे। उसकी हंसी उड़ाई जाने के लिए गैर यहूदियों के हाथ सुपुर्द किए जाने के साथ कोड़े लगाएंगे और क्रूस पर चढ़ा देंगे। वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा।
तब जब्दी की पत्नी अपने बेटों के साथ यीशु के कदमों पर गिरकर कुछ मांगने लगी। यीशु ने उसे पूछा,
तुम्हें क्या चाहिए?
उसने उनसे कहा,
कुछ ऐसा कीजिए कि आसमानी राज्य में मेरे दोनों बेटों में से एक आपके बाएं हाथ और दूसरा दाएं हाथ पर बैठे।
लेकिन यीशु ने जवाब में कहा,
तुम्हें मालूम नहीं कि क्या मांग रहे हो? क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जो मैं पीने जा रहा हूँ, और उस बपतिस्मे को लोगे जो मैं लेने पर हूँ?
उन्होंने कहा,
हम कर सकते हैं।
यीशु ने उनसे कहा,
तुम सचमुच में मेरा प्याला पियोगे और मैं जिस बपतिस्मे को लेने पर हूँ उसे लोगे, लेकिन मेरे दाहिने हाथ और बाएं हाथ पर बैठाने का काम मेरा नहीं है, लेकिन ये उनको मिलेगा जिनको मेरे पिता ने तैयार किया है।
जब बाकी 10 ने यह सब सुना तो उन दोनों भाइयों से नाराज होने लगे। लेकिन यीशु ने उन्हें बुलाकर कहा,
तुम्हें मालूम है कि गैर यहूदियों में प्रधान लोग दूसरों के ऊपर शासन करते हैं, और जो महान हैं वे दूसरों के ऊपर अधिकार जताते हैं। लेकिन तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है उसे दूसरों का सेवक बनना चाहिए। जो सबसे आगे का या ऊंचा पद चाहते हैं उन्हें दूसरों का गुलाम बनना चाहिए। उसी तरह से मनुष्य का पुत्र सेवा लेने के बजाय सेवा करने आया, और अपना जीवन बहुत से लोगों के बदले में देने के लिए आया।
जैसे ही वे यरीहो से निकल रहे थे, यीशु के साथ एक बड़ी भीड़ होली। अचानक ही दो व्यक्तियों ने, जिन्हें आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था और रास्ते के किनारे बैठे हुए थे, सुना कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं। सुनते ही वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे,
हे दाऊद के बेटे, हम पर दया कीजिए।
भीड़ ने उन्हें चिल्लाने को मना किया, लेकिन उन्होंने और जोरों से चिल्ला चिल्ला कर कहा,
हे दाऊद की संतान, हम पर दया कीजिए।
यीशु वहीं खड़े हो गए और उनसे पूछा,
तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं?
उन्होंने उनसे कहा,
स्वामी, यही कि हम देखने लगे।
यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छू ली और तुरंत उनकी आंखें खुल गईं। उसी समय वे यीशु को मानने लगे। मत्ती अध्याय 21। जब वे यरूशलेम के पास बेतफगे के पास जैतून पहाड़ पर पहुंचे, तब यीशु ने अपने दो शिष्यों को ये कहते हुए भेजा,
अपने सामने के गांव में जाते ही तुम एक गधी को उसके बच्चे के साथ बंधी पाओगे, उन्हें खोलकर यहां ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो तुम कहना कि यीशु को इसकी जरूरत है, तब वो तुम्हें खोलकर तुरंत ले जाने देगा।
ये सब इसलिए हुआ ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा कही हुई बात पूरी हो कि
सियोन के लोगों से कहो, देखो,
तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, वह नम्र है और गधे पर बैठा हुआ है।
शिष्यों ने जाकर वही किया जिसे करने का हुक्म यीशु ने दिया था। गधे और उसके बच्चे को लाकर कुछ ने उनके ऊपर अपने कपड़े डाल दिए और यीशु को उस पर बैठा दिया। कुछ ने पेड़ों की डालियों को तोड़कर सड़क पर डाल दिया। एक बड़ी भीड़ ने सड़क पर अपने कपड़े बिछाए। भीड़ जो यीशु के आगे और पीछे थी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी,
दाऊद के बेटे को होसन्ना, जो प्रभु के नाम से आता है वह आशीषित है।
जब वे यरूशलेम आए सारा शहर जोश से पूछ रहा था,
ये कौन है?
भीड़ ने कहा,
ये गलील के नासरत के भविष्यवक्ता यीशु हैं।
तब यीशु परमेश्वर के भवन में गए और जो लोग वहां खरीदना बेचना कर रहे थे उनकी मेजों को पलट दिया और कबूतर बेचने वालों की कुर्सियों को फेंक दिया। यीशु ने उनसे कहा, यह लिखा है,
मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे चोरों का अड्डा बना दिया है।
आंखों से लाचार और पैरों से अपंग लोग भी प्रार्थना भवन में उनके पास आए और यीशु ने उन्हें ठीक कर दिया। जब प्रधान पुरोहित और शिक्षकों ने यीशु के अजीब कामों को देखा और प्रार्थना भवन में बच्चों को चिल्लाते,
दाऊद की संतान को होसाना
सुना, तो बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा,
क्या तुम ये सुन रहे हो कि ये क्या कह रहे हैं?
यीशु ने उनसे कहा,
हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि छोटे बच्चों के मुंह से और दूध पीते बच्चों के मुंह से उन्होंने अपनी तारीफ करवाई?
तब वह उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया को गए और उन्होंने वहीं रात गुजारी। सुबह जब वे शहर लौटे तो उन्हें बड़ी भूख लगी। रास्ते में जब उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा तो उसके पास गए, लेकिन पत्तियों को छोड़कर उसमें कुछ नहीं पाने पर उसने कहा,
आज से तुम में कभी भी फल न निकले।
तुरंत अंजीर का पेड़ सूख गया। शिष्यों ने जब यह देखा तो आश्चर्य से कहा,
अरे, अंजीर का पेड़ कितनी जल्दी सूख गया?
यीशु ने जवाब में उनसे कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम्हारे पास विश्वास है और शक नहीं है तो तुम सिर्फ यही ना करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, लेकिन इस पहाड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में जा गिरो तो ऐसा हो जाएगा। जो कुछ तुम बिना शक किए हुए दुआ में मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा।
जब यीशु प्रार्थना भवन में आकर सिखा रहे थे तो प्रधान पुरोहित और लोगों के अगुओं ने आकर कहा,
तुम ये काम किसके अधिकार से करते हो?
और यीशु ने जवाब में कहा,
तुम मुझे जवाब दो तो मैं भी तुम्हें बता सकूंगा कि किसके अधिकार से मैं ये काम करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी तरफ से था, स्वर्ग के आदेश से या इंसानों की तरफ से?
वह लोग आपस में ही बहस करने लगे,
अगर हम कहें स्वर्ग से तो वो हमसे कहेंगे, तो तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? लेकिन अगर हम कहें मनुष्यों की तरफ से तो हमें लोगों का डर है, क्योंकि हर एक जन यूहन्ना को नबी समझता था।
उन लोगों ने यीशु को यह जवाब दिया,
हमें नहीं मालूम।
तब यीशु ने उनसे कहा,
तो मैं भी तुम्हें ये नहीं बताता कि मैं किसके अधिकार से ये सब काम करता हूं। एक आदमी के दो बेटे थे। वो उनमें से एक के पास गया और कहा, बेटे, आज जाकर मेरे अंगूर के बगीचे में काम कर लो। उसने जवाब दिया, मैं नहीं करता। बाद में उसका मन बदल गया और काम करने गया भी। जब दूसरे बेटे के पास जाकर उसने वही बात कही तो उसका जवाब था, श्रीमान जी, अभी जाता हूं। लेकिन उसने वैसा किया नहीं। अब तुम ही बताओ कि इन दोनों में से किसने अपने पिता की बात मानी?
उन लोगों ने कहा,
पहले ने।
यीशु ने उन लोगों से कहा,
मैं तुमसे यकीनन कहता हूं कि टैक्स जमा करने वाले और यौन व्यापार में लगी महिलाएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में दाखिला पाएंगे, क्योंकि तुम्हें सच्चाई के पथ को दिखाने के लिए यूहन्ना आया था, लेकिन तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन टैक्स लेने वालों और वेश्याओं ने उस पर भरोसा रखा, लेकिन तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उस पर विश्वास कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक व्यक्ति था जिसने दाक की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। उसने उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट भी बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर वो खुद विदेश चला गया। जब फल का मौसम नजदीक आया तो उसने अपने नौकरों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, परंतु किसानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थर मारे। फिर उसने दूसरे नौकरों को भेजा जो पहलों से अधिक थे और उन्होंने उनके साथ भी वही किया। अंत में उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे बेटे का सम्मान करेंगे। परंतु किसानों ने जब पुत्र को देखा तो आपस में कहने लगे, ये तो उत्तराधिकारी है, आओ उसे मार डालें और उसकी विरासत हमें मिल जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़ा और अंगूर के बगीचे के बाहर निकालकर मार डाला। सो जब अंगूर के बगीचे का मालिक आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा?
उन्होंने उनसे कहा,
वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और अंगूर के बगीचे का ठेका अन्य किसानों को दे देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे।
यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने किसी काम का नहीं जाना था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और ऐसे लोगों को दे दिया जाएगा जो उसका फल लाएंगे। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा।
मुख्य पुरोहित और फरीसी उनके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में बोल रहे हैं, और वह उन्हें कैद करना चाहते थे, परंतु उन्हें लोगों का डर था क्योंकि वह यीशु को भविष्यवक्ता मानते थे। मत्ती अध्याय 22। लोगों को उदाहरण या दृष्टांत देते हुए यीशु ने फिर से कहा,
स्वर्ग का राज्य एक ऐसे राजा की तरह है जिसने अपने बेटे की शादी का इंतजाम किया। उसने अपने नौकरों को उन लोगों के पास भेजा जिन्हें नेवता दिया गया था, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। उसने एक बार फिर अपने नौकरों को ये कहला भेजा, नेवते में बुलाए लोगों से कहना कि मैंने खाना तैयार किया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, दावत में आ जाओ। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इधर उधर चल दिए, एक अपने खेत में, दूसरा अपने काम पर। बाकी लोगों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उन्हें मार भी डाला। जब राजा को ये बात मालूम पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी फौज को भेजकर हत्यारों को नाश किया और शहर को जला डाला। तब उसने अपने नौकरों से कहा, खाना तैयार है लेकिन जिन्हें बुलाया गया था वे लायक नहीं थे, इसलिए सड़कों के चौराहों पर जिस किसी को पाते हो उसी शादी में न्योता दो। इसलिए वे नौकर सड़कों पर गए और जिस बुरे या अच्छे इंसान को पाया उसे ले आए। इस तरह से शादी का कमरा मेहमानों से भर गया। जब राजा मेहमानों से मिलने आया तो उसने एक ऐसे इंसान को वहां पाया जो दावत के कपड़े नहीं पहने था। उसने उससे कहा, दोस्त तुम यहां बिना अच्छे कपड़े पहने कैसे आ गए? वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तब राजा ने नौकरों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर ले जाओ और अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। सभी लोगों को नेवता तो दिया गया है लेकिन सभी नेवते में आने की शर्त को मंजूर नहीं करते हैं।
तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उन्हें किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ यीशु के पास ये कहने को भेजा,
हे गुरु, हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाते हैं और किसी की परवाह नहीं करते, क्योंकि आप मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करते। इसलिए हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं, कैसर को कर देना उचित है या नहीं?
यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा,
हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ।
तब वह उसके पास एक दिनार ले आए यीशु ने उन लोगों से पूछा,
ये मूर्ति और नाम किसका है?
उन्होंने कहा,
कैसर का।
यीशु ने कहा,
जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो।
यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उन्हें छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी जो कहते थे कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनके पास आए और उन्होंने यीशु से पूछा,
हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वो महिला भी मर गई। सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी?
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
तुम बाइबल और परमेश्वर की ताकत नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, कि मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है।
यह सुनकर लोग उनके उपदेश से अचंभित रह गए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने यीशु को जांचने के लिए उनसे पूछा,
हे गुरु, बाइबल में कौन सी आज्ञा बड़ी है?
उन्होंने उससे कहा,
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी आज्ञा भी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था, नियम शास्त्र और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है।
जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा,
मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वो किसकी संतान है?
उन्होंने उससे कहा,
दाऊद की।
यीशु ने उनसे पूछा,
तो दाऊद आत्मा के द्वारा उसे प्रभु क्यों कहता है? कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उन्हें प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे हुआ?
उसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। मत्ती अध्याय 23। तब यीशु भीड़ के साथ और अपने शिष्यों से बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा,
धर्म शिक्षक और फरीसी मूसा के पद पर विराजमान हैं, इसलिए जो कुछ मानने के लिए वे कहते हैं मानो और करो, लेकिन उन सब बातों को मत करो जो वे तुमसे करने के लिए कहते हैं लेकिन खुद करते नहीं हैं। वे उठाया ना जा सकने वाला बोझ लोगों के कंधों पर डाल देते हैं, लेकिन वे ऐसे बोझ को उठाने में अपनी उंगली से भी मदद नहीं करते हैं। वे लोगों को दिखाने के लिए अपने काम करते हैं, वे अपने तावीजों को बड़ा करते और अपने चोगों की किनार को चौड़ा करते हैं। दावतों में ऊंची गद्दी पर बैठना चाहते हैं और आराधनालय में खास कुर्सी ढूंढते हैं। वे बाजार में दूसरों से सलाम चाहते हैं और शिक्षक कहलवाना मांगते हैं। तुम अपने मन में ये चाह मत रखो कि कोई तुम्हें शिक्षक कहकर पुकारे, क्योंकि तुम्हारा एक ही शिक्षक है, वो है मसीह, और तुम एक दूसरे के भाई बहन हो। इस दुनिया में किसी को मेरे पिता कहकर मत बुलाना, क्योंकि तुम्हारे एक ही स्वर्गीय पिता परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में हैं। तुम खुद स्वामी मत कहलाना, क्योंकि सिर्फ मसीह ही तुम्हारे स्वामी हैं। लेकिन जो तुम में सबसे बड़ा है वो सबका नौकर बने। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को नम्र करेगा वो बड़ा किया जाएगा।
लेकिन हे कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पखंडी हो। तुम दूसरों के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए रुकावट हो। तुम ना ही खुद दाखिल होते हो और ना दूसरों को दाखिल होने देते हो। हे कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम लंबी लंबी दिखाने वाली प्रार्थना करके विधवाओं के घर लूटते हो, इसलिए तुम बड़े अपराध के दोषी हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम समुद्र और भूमि की यात्रा करके किसी तरह एक इंसान को अपने मत में ले आते हो, लेकिन उसके बाद उसे अपनी तरह नरक की संतान बना देते हो। अंधे कपटी रास्ता दिखाने वाले, जो कहते हो कि इस प्रार्थना भवन की कसम खाने से कुछ नहीं, लेकिन जो इस भवन के सोने की कसम खाता है वो अपने शब्द से बंध जाता है। बेवकूफों और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जो सोने को शुद्ध करता है? तुम कहते हो जो वेदी की कसम खाता वो नहीं, लेकिन जो इस पर रखी भेंट की कसम खाता है वो भी अपने शब्द से बंध जाता है। तुम बेवकूफों और अंधो, क्या भेंट बड़ी है या वो वेदी जो इस पर रखी चीजों को पवित्र करती है? इसलिए जो वेदी की कसम खाता है वो इसकी और इस पर रखी चीजों की कसम खाता है। जो प्रार्थना भवन की कसम खाता है वो इसकी और इसमें रहने वाले की कसम खाता है। जो स्वर्ग की कसम खाता है वो वहां के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की भी कसम खाता है। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवां भाग देते हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बातों की अनदेखी करते हो। वे है इंसाफ, दया और विश्वास। दसवां भाग देने के साथ ये बातें भी तुम्हें करनी चाहिए थी। अंधे अगुओ, तुम मच्छर को छानते हो लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम प्याले को बाहर से साफ करते हो लेकिन अंदर से वे डकैती और असंयम से भरे हैं। अंधे फरीसियों, पहले प्याले और तश्तरी के भीतरी हिस्से को साफ करो ताकि उनका बाहरी हिस्सा भी साफ हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी कब्रों की तरह हो जो बाहर से खूबसूरत दिखती हैं लेकिन अंदर सड़ाहट है। इसी तरह तुम लोग भी बाहर से लोगों को धर्मी दिखते हो लेकिन अंदर से कपट और बेइंसाफी से भरे हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम नबियों की कब्र बनाते हो और भले लोगों की कब्रों को सजाते हो और कहते हो कि अगर हम अपने पूर्वजों के दिनों में होते तो नबियों की हत्या में उनके साझी ना होते। इसी से तो तुम अपनी गवाही आप ही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपो, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और बहुतों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्याह के पुत्र जकरयाह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तुम जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती हो और जो तुम्हारे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती हो, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बच्चों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे।
मत्ती अध्याय 24। जब यीशु प्रार्थना भवन से बाहर निकल रहे थे, तभी उनके शिष्य उनके पास आकर उन्हें प्रार्थना भवन की इमारत दिखाने लगे। यीशु ने उनसे कहा,
क्या ये सभी तुम देखते नहीं हो? मैं तुमसे सच कहता हूं, इसका ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसे निकाल फेंका नहीं जाएगा।
जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे, शिष्य अकेले में उनके पास आए और कहने लगे,
हमें बताएं कि ये सब कुछ कब होने वाला है? आपके आने का और दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा?
यीशु ने उत्तर में कहा,
सावधान रहो कि तुम्हें कोई धोखा ना देने पाए। मेरे नाम से बहुत लोग आकर ये कहकर भरमाएंगे कि मैं मसीह हूँ। तुम युद्ध और युद्ध की अफवाह सुनोगे। देखो, तुम परेशान मत हो जाना, क्योंकि इन सब बातों का होना जरूरी है, लेकिन फिर भी अंत इतनी जल्दी नहीं होगा। क्योंकि एक देश दूसरे देश के खिलाफ और एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ उठ खड़ा होगा। जगह जगह अकाल, मरियां और भूकंप होंगे। ये सब कुछ गर्भवती स्त्री को होने वाली प्रसव पीड़ा की तरह होंगे। तब वे तुम्हें सताए जाने के लिए न्यायालय में सौंपेंगे और मार भी डालेंगे। मेरे नाम की खातिर सारे देश तुमसे नफरत करेंगे। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को धोखा देंगे और नफरत करेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को धोखा देंगे। अनुशासनहीनता के बढ़ जाने से बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो आखिरी तक धीरज रखेगा वही बचेगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे संसार में दिया जाएगा, ताकि सब राष्ट्रों को गवाही हो, और तब जगत का अंत होगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली चीज को पवित्र जगह में देखो जिसके बारे में दानियल नबी ने कहा था, तब यहूदिया के लोग पहाड़ों पर चले जाएं। जो घर की छत पर हों, वो अपने घर से कुछ लेने के लिए नीचे ना आए। जो खेत में हो, वो अपने कपड़े लेने वापस घर ना जाए। उन पर हाय जिनके पास उन दिनों में दूध पीते बच्चे या नवजात शिशु होंगे। ये विनती करना कि तुम्हें जाड़े या विश्राम दिन में ये ना सहना पड़े, जैसा दुनिया की शुरुआत से अब तक नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, ऐसी पीड़ा का समय आने वाला है। अगर वे दिन कम नहीं किए जाते तो कोई इंसान बच नहीं पाता, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए वे दिन कम किए गए हैं। उस समय अगर कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो किसी की बात मत मानना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होकर बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाएंगे, ताकि अगर संभव हो तो चुने हुओं को बहका दें। मैंने तुम्हें पहले ही से सचेत किया है, इसलिए अगर वे तुमसे कहें, देखो वो जंगल में है तो मत जाना, या देखो वो अंदर है तो भरोसा मत रखना। जिस तरह से बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, उसी तरह मनुष्य के पुत्र का आना होगा। क्योंकि जहां लाश है वहीं गिद्ध इकट्ठा होंगे। उन क्लेश के दिनों के तुरंत बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद की रोशनी भी जाती रहेगी, आसमान से तारे नीचे गिर पड़ेंगे और आसमान की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब पुत्र के आने का निशान आसमान में दिखाई देगा। दुनिया के सभी निवासी दुखी होवेंगे। वे परमेश्वर के पुत्र को बड़ी शान के साथ आसमान में बादलों पर आते देखेंगे। वो अपने स्वर्ग दूतों को तुरही की बड़ी आवाज के साथ भेजेंगे। वे उनके चुने हुओं को चारों दिशाओं से आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक के लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब अंजीर के पेड़ से इस दृष्टांत का मतलब सीख लो। जब उसकी डाली कोमल है और पत्तियां निकलती हैं, तुम्हें मालूम होता है कि गर्मी का मौसम पास है। इसी तरह जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वो पास में है, बिल्कुल दरवाजे पर ही। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जब तक ये बातें पूरी ना हो लें, ये पीढ़ी खत्म नहीं होवेगी। आकाश और पृथ्वी का अंत हो जाएगा, लेकिन मेरी बातें बिना पूरी हुए नहीं रहेंगी। लेकिन जहां तक उस दिन और उस पल की बात है, उस विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के स्वर्गदूत, लेकिन सिर्फ मेरे पिता जानते हैं। लेकिन जैसा नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में होगा। जब तक कि नूह ने जहाज में प्रवेश नहीं किया और जल प्रलय शुरू नहीं हुआ, लोग खाने पीने और शादी ब्याह में मगन थे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और लोगों को बहा नहीं ले गया, उन्हें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। उसी तरह मनुष्य के पुत्र का आना होगा। उस समय दो लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो लोग चक्की चलाते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि प्रभु कब आएंगे। लेकिन ये समझो कि अगर घर के मालिक को ये मालूम है कि रात में चोर किस समय आएगा, तो वो जागता रहेगा और घर में सेंध नहीं लगने देगा। इसलिए तुम भी तैयार रहना, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऐसे समय में आ जाएगा जिस समय में तुम आशा नहीं कर सकते। ईमानदार और समझदार सेवक कौन होगा? वही ना जिसके मालिक ने उसे घर का प्रबंधक बनाया, ताकि उन्हें सही समय पर खाना दे। वही सेवक आशीषित है जिसका मालिक उसे वैसा ही करते पाएगा। मैं तुमसे निश्चय के साथ कहता हूं कि वो उसे अपने सारे कारोबार और धन संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। लेकिन अगर वो बुरा नौकर अपने मन में कहे कि मेरे मालिक के आने में देर है, और अपने संगी साथियों की पिटाई करने एवं शराबियों के साथ पीने लगे, तब तो उस नौकर का मालिक एक ऐसे दिन और समय में आ जाएगा जबकि वो उसके आने की आशा भी ना करता होगा। तब वो उसे कड़ी सजा देगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उसका भाग कपटियों के साथ होगा।
मत्ती अध्याय 25।
स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों की तरह होगा जो अपने दियों को लेकर दूल्हे से मिलने गईं। उनमें से 5 समझदार और 5 बेवकूफ थीं। बेवकूफों ने दियों के साथ तेल नहीं लिया, लेकिन समझदारों ने अपने बर्तनों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो वे ऊँगते ऊँगते सो भी गईं। बीच रात में बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने जल्दी चलो। तभी सभी कुमारियां उठकर अपने अपने दियों की बत्तियां ठीक करने लगीं। बेवकूफों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, क्योंकि हमारे दिए बुझ रहे हैं। लेकिन समझदारों ने जवाब में कहा, नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं तो हम सबको ये काफी नहीं होगा। अच्छा ये है कि तुम बाजार जाकर तेल बेचने वालों से खरीद लो। जब वे तेल खरीदने जा रही थीं, दूल्हा आ गया। जो तैयार थीं, वे दूल्हे के साथ शादी में चली गईं। दरवाजा बंद कर दिया गया। इसके बाद दूसरी कुवारियां भी ये कहते हुए आईं, प्रभु दरवाजा खोलिए। लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि तुम वो समय नहीं जानते जब मनुष्य का पुत्र आएगा। क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे इंसान की तरह है जिसने दूर देश का सफर शुरू करने से पहले अपने नौकरों को बुलाकर अपनी चीजों की जिम्मेदारी सौंप दी। उनमें से हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार पहले को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया। तुरंत उसके बाद वो यात्रा पर निकल पड़ा। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने इस्तेमाल करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे, उसने 2 और कमाए। लेकिन जिसे 1 मिला था, उसने जाकर मालिक के पैसे को जमीन में गाड़ दिया। काफी समय के बाद वापस लौटने पर उस मालिक ने हिसाब मांगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे। उसने 5 और लाकर मालिक से कहा, मालिक देखिए मैंने 5 और कमा लिए हैं। उसके मालिक ने कहा, बहुत बढ़िया अच्छे और ईमानदार सेवक, तुम कुछ ही चीजों में ईमानदार रहे हो, मैं तुम्हें बहुत सी चीजों के ऊपर अधिकारी ठहराऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो जाओ। जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, मालिक आपने मुझे 2 तोड़े दिए थे, देखिए मैंने 2 और तोड़े कमाए हैं। उसके मालिक ने उससे कहा, बहुत बढ़िया अच्छे और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे हो, मैं तुम्हें बहुत सी चीजों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा, अपनी मालिक की खुशी में शामिल हो जाओ। तब जिस नौकर को 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, मालिक मैं आपको जानता हूं कि आप सख्त मन के हैं, आप वही फसल काटना चाहते हैं जहां बोते नहीं हैं, आपने जहां छितराया भी नहीं वहीं बटोरना चाहते हैं। डर की वजह से मैंने उस तोड़े को जिसे आपने मुझे दिया था जाकर जमीन में गाड़ दिया, देखिए ये रहा आपका तोड़ा। उसके मालिक ने जवाब में कहा, तुम दुष्ट और आलसी नौकर, तुम जानते थे कि जहां मैं बोता नहीं हूं वही काटना चाहता हूं, वही इकट्ठा करना चाहता हूं जहां छितराता नहीं हूं, इसलिए तुमको चाहिए था कि बैंक में जमा करते तो वापस आने पर मैं ब्याज के साथ उसे ले लेता, इसलिए उससे तोड़ा लेकर उसे दे दो जिसके पास 10 तोड़े हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। इस निकम्मे सेवक को घोर अंधेरे में फेंक दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। जब परमेश्वर का पुत्र अपनी शान में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, सभी देश उसकी मौजूदगी में इकट्ठे होंगे। जिस तरह से चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है उसी तरह से वो उन्हें अलग करेगा, वो भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर रखेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के आशीषित लोगों, आओ जिस राज्य को दुनिया की शुरुआत से तैयार किया गया है उसमें दाखिल हो, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मेरी प्यास बुझाई, मैं अनजान था तुमने मेरा स्वागत किया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए, मैं जेल में था और तुमने मुझे भेंट दी। तब माफी पा चुके लोग ये कहते हुए जवाब देंगे, प्रभु हमने आपको कब भूखा देकर खाना खिलाया था, प्यासा देकर पानी पिलाया था, हमने कब आपको अनजान देखकर घर के भीतर बुलाया या नंगा देखकर कपड़े पहनाए, या कब हमने आपके बीमार होने या जेल में बंद होने पर मुलाकात की। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे यकीनन कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं विदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और जेल में था और तुमने मेरे ऊपर ध्यान न दिया। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु हमने आपको कब भूखा प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या जेल में देखा और आपकी सेवा टहल ना की। तब वो उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो उन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। ऐसे लोग अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।
मत्ती अध्याय 26। जब यीशु ये सभी बातें कह चुके तो उन्होंने शिष्यों से कहा,
तुम्हें मालूम हो कि फसा के त्योहार के दो दिन बाद मनुष्य का पुत्र क्रूस पर मारा जाएगा।
तब प्रधान पुरोहित, शिक्षक और बुजुर्ग कैफा महापुरोहित के महल में इकट्ठे हुए। चलाकी से यीशु को पकड़कर मारने की साजिश उन्होंने वहीं बनाई, लेकिन उन्होंने कहा,
त्योहार के दिन नहीं, ताकि ऐसा न हो कि लोगों में बवाल हो जाए।
जब यीशु शिमोन कुष्ठ रोगी के घर में बेतनिया में थे, एक स्त्री एक अल्बास्टर के बर्तन में कीमती इत्र ले आई। उसने कुर्सी पर बैठे हुए यीशु के सिर पर उस खुशबूदार इत्र को उंडेल दिया। शिष्य यह देखकर कुड़कुड़ा कर कहने लगे,
इसे बर्बाद क्यों कर दिया गया? इसी इत्र को काफी पैसों में बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती थी।
यह जानकर यीशु ने उनसे कहा,
इस महिला को क्यों सता रहे हो? उसने मेरे लिए ये किया है। गरीब लोग तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो इत्र उंडेला है, वो मेरे दफनाए जाने के लिए है। मैं ये सच्चाई बताए देता हूँ कि दुनिया में जहाँ कहीं सुसमाचार दिया जाएगा, वहाँ जो कुछ इस महिला ने किया है, उसे भी मेरी याद में बताया जाएगा।
तब यहूदा इस्करियोती, जो उन बाहरों में से एक था, प्रधान पुरोहित के पास जाकर कहने लगा,
मैं खुद यीशु को तुम्हारे हाथों में सुपुर्द कर दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे?
उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के देना मंजूर कर लिया। उसी समय से वह यीशु को पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। अखमेरी रोटी के त्योहार के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर कहने लगे,
आप कहां चाहते हैं कि हम फसा खाने की तैयारी करें?
यीशु ने कहा,
शहर में जाकर फलां व्यक्ति से कहना, गुरु ने कहा है कि मेरा समय नजदीक है, अपने शिष्यों के साथ मैं तुम्हारे घर पर फसा का त्योहार मनाऊंगा।
शिष्यों ने यीशु के कहने के अनुसार किया और फसा तैयार किया। शाम के समय यीशु अपने 12 चेलों के साथ बैठ गए। जब वे सब खा ही रहे थे, तभी यीशु ने कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा।
सभी शिष्य बहुत दुखी हुए और हर एक जन पूछने लगा,
प्रभु, क्या वो मैं हूँ?
तब यीशु ने जवाब दिया,
जो कटोरे में अपना हाथ मेरे हाथ के साथ ही डाल रहा है, वो मुझे पकड़वाएगा। जैसा लिखा है, वैसा मनुष्य के पुत्र के साथ होगा। लेकिन अफसोस उस पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। अच्छा होता कि वो इंसान पैदा ही ना हुआ होता।
तब यहूदा, जिसने यीशु को धोखा दिया था, पूछा,
स्वामी, क्या वो मैं हूं?
यीशु ने कहा,
तुमने खुद ही कबूल कर लिया है।
यीशु ने धन्यवाद देकर रोटी के टुकड़े करके शिष्यों को देते समय कहा,
लो, खाओ, ये मेरी देह को दिखाती है।
फिर यीशु ने प्याले के लिए धन्यवाद देते हुए कहा,
तुम सभी इसमें से पियो। नई वाचा उस खून की तरफ इशारा है, जो बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाने वाला है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अंगूर के रस को मैं उस दिन तक नहीं पीऊंगा, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ फिर से ना पीऊं।
भजन गाने के बाद वे सब जैतून पहाड़ पर चले गए। तब यीशु ने उनसे कहा,
मेरी वजह से आज रात तुम सभी लड़खड़ा जाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे पर वार करूंगा और झुंड की भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। लेकिन जी उठने के बाद तुमसे पहले मैं गलील जाऊंगा।
पतरस ने जवाब में कहा,
आपकी वजह से चाहे सब लड़खड़ाएं, मैं मजबूत बना रहूंगा।
यीशु ने उससे कहा,
मैं ये सच्चाई बताता हूँ कि इसी रात इसके पहले कि मुर्गा बांग दे, तुम 3 बार मेरा इनकार कर चुकोगे।
पतरस ने जवाब दिया,
मुझे चाहे मरना भी पड़े, तब भी मैं आपका इनकार नहीं करूंगा।
सभी शिष्यों ने इसी बात की हामी भरी। तब यीशु उनके साथ गतसमनी नामक जगह पर आए और शिष्यों से कहा,
तुम लोग यही ठहरो।
अपने साथ यीशु पतरस और जब्दी के दो बेटों को ले गए। वहीं पर उनका मन भारी और दुखी हो गया। तब यीशु ने उन सभी से कहा,
मेरा मन बहुत दुखी है और ऐसा लग रहा है मानो मेरा प्राण निकला जा रहा है। यही इंतजार करो और जागते रहो।
जैसे ही वे थोड़ा आगे गए, मुंह के बल गिरकर पिता से कहने लगे,
मेरे पिताजी, अगर ये हो सकता है तो ये दुख का प्याला मुझे ना पीना पड़े, फिर भी मेरी नहीं लेकिन आपकी मर्जी पूरी हो।
यीशु ने आकर शिष्यों को सोता देखकर पतरस से कहा,
ये क्या तुम मेरे साथ एक घंटे भी जाग न सके? जागते हुए पिता से विनती करो ताकि तुम परीक्षा में असफल ना हो जाओ। आत्मा सरगर्म है लेकिन देह कमजोर है।
दूसरी बार यीशु आगे बढ़ गए और कहने लगे,
मेरे पिताजी, अगर ये प्याला मुझे पीना है तो आपकी मर्जी पूरी हो।
दोबारा लौटने पर यीशु ने फिर उन्हें सोता पाया और उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर यीशु फिर आगे बढ़ गए और वही बात कहकर तीसरी बार प्रार्थना करने लगे। वापस आने पर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
क्या तुम अभी तक सो रहे हो और आराम कर रहे हो? देखो, समय आ पहुंचा है कि मनुष्य के पुत्र को धोखा दिया जाए और अपराधियों के सुपुर्द किया जाए। उठो, चलो, देखो, मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ गया है।
यीशु ये कह ही रहे थे कि अचानक 12 में से यहूदा वहां आ पहुंचा। उसके साथ लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। उनके हाथों में तलवारें और लाठियां थीं। ये लोग प्रधान पुरोहितों और बुजुर्गों की तरफ से भेजे गए थे। धोखा देने वाले ने पहले ही से ये बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं उसे तुम पकड़ लेना। तुरंत वे यीशु के पास पहुंचा और चुंबन लेते हुए कहा,
गुरुजी प्रणाम।
यीशु ने कहा,
दोस्त, तुम यहां क्यों आए हो?
तब वहां पहुंचकर उन्होंने यीशु के ऊपर हाथ डालकर उन्हें पकड़ लिया। अचानक यीशु के साथ के लोगों में से एक ने अपना हाथ बढ़ाकर तलवार चला दी, जिससे प्रधान पुरोहित के नौकर का कान कट गया। तब यीशु ने उससे कहा,
अपनी तलवार मयान में रख लो। जो लोग तलवार से मारते हैं उन्हें भी तलवार से मारा जाएगा। तुम क्या सोचते हो कि अगर मैं अपने पिता से कहूं, क्या वो 12 पलटन से ज्यादा स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेज नहीं सकते? लेकिन यदि ऐसा हुआ तो जैसा पवित्र वचन में लिखा है वो कैसे पूरा होगा?
तभी यीशु ने भीड़ से कहा,
क्या जिस तरह से चोर को पकड़ा जाता है उसी तरह से तुम तलवारें भाले लेकर मुझे पकड़ने आए हो? प्रार्थना भवन में अक्सर मैं तुम लोगों को सिखाया करता था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बाइबल में लिखी बातें पूरी हो।
तब सभी शिष्य यीशु को छोड़ भाग खड़े हुए। जिन लोगों ने यीशु को पकड़ लिया वह उन्हें प्रधान पुरोहित कैफा के पास ले गए, जहां शिक्षक और बुजुर्ग अगुवे इकट्ठे थे। लेकिन एक दूरी पर प्रधान पुरोहित के आहते में जाकर पतरस नौकरों के साथ बैठ गया ताकि देखे कि फिर क्या होगा। प्रधान पुरोहित, बुजुर्ग और सारी सभा उन्हें मार डालने के लिए झूठी गवाही की तलाश में थे। हालांकि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, लेकिन कुछ सच्चाई सामने नहीं आई। आखिर में दो व्यक्तियों ने आगे आकर कहा,
इसने कहा था कि मैं परमेश्वर के घर को 3 दिन में धराशायी कर सकता हूँ और 3 दिन में फिर बना भी सकता हूँ।
तब प्रधान पुरोहित ने खड़े होकर यीशु से कहा,
क्या आप कोई जवाब नहीं देते? ये लोग तो आपके खिलाफ क्या कुछ नहीं कह रहे हैं।
लेकिन यीशु खामोश रहे। तब प्रधान पुरोहित ने यीशु से कहा,
मैं जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं तो हमें बताइए।
यीशु ने उससे कहा,
तुमने कह ही दिया है। इसके अलावा मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके बाद तुम परमेश्वर के पुत्र को अधिकार के पद पर आसीन और आसमान के बादलों पर आते देखोगे।
इसके बाद प्रधान पुरोहित ने अपने कपड़े फाड़ते हुए कहा,
यह निंदा कर रहा है। अब हमें और गवाहों की क्या जरूरत? अब तो तुम लोगों ने स्वयं ही इसके मुंह से सुन लिया है। तुम क्या सोचते हो?
उन्होंने जवाब में कहा,
वह मौत की सजा के लायक है।
तब उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और घूसों से मारा। दूसरों ने थप्पड़ मारा और कहा,
मसीह जी, बताइए किसने मारा आपको?
इसी दौरान पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था, तभी एक नौकरानी लड़की आकर कहने लगी,
तुम भी तो गलील के यीशु के साथ थे।
लेकिन उसने सबके सामने इनकार करते हुए कहा,
यह सब तुम क्या कह रही हो? मैं यह सब नहीं जानता।
तब पतरस वहां से निकलकर बाहर आया। तब दूसरी नौकरानी ने उसे देखकर वहां खड़े लोगों से कहा,
ये आदमी भी नासरी यीशु के साथ था।
लेकिन फिर से उसने शपथ खाते हुए इनकार किया कि वह यीशु को जानता भी नहीं है। कुछ समय के बाद उन्होंने जो वहीं पास खड़े हुए थे आकर पतरस से कहा,
तुम्हारी बातचीत से मालूम पड़ता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो।
तब वह कसम खाकर शाप देते हुए कहने लगा,
मैं उस इंसान को जानता तक नहीं हूँ।
उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पतरस को यीशु की वह बात याद आई कि उन्होंने ये कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले वह 3 बार उनका इनकार कर चुका होगा। तभी वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। मत्ती अध्याय 27। सुबह होते ही सभी प्रधान पुरोहितों और बुजुर्ग नेताओं ने यीशु को मार डालने के बारे में सलाह मशवरा किया। उनको बांधने के बाद वे पुंतियुस पिलातुस को सुपुर्द करने के लिए बाहर ले गए। तब यहूदा, जिसने यीशु को पकड़वाया था, यीशु को पकड़वाया जाता देख अपने आप को कोसने लगा। प्रधान महायाजकों और बुजुर्ग नेताओं के पास 30 चांदी के सिक्के वापस लाकर देते हुए उसने कहा,
एक निरपराध को धोखा देकर मैंने अपराध किया है।
उन लोगों ने जवाब दिया,
हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, तुम ही देखते बैठो।
उसने प्रार्थना भवन में उन सिक्कों को फेंक दिया और जाकर फांसी लगा ली। प्रधान पुरोहितों ने उन सिक्कों को उठाकर कहा,
उन्हें खजाने में रखना जायज नहीं, क्योंकि यह खून का दाम है।
उन्होंने सलाह मशवरा करके कुम्हार का खेत खरीदा ताकि विदेशियों को वहीं दफन किया जा सके, इसलिए उस खेत का नाम आज तक खून का खेत है। तब यर्मिया नबी की कही हुई बबात पूरी हुई और उन्होंने 30 चांदी के सिक्के लिए, जो कि एक व्यक्ति का मूल्य आंका गया था। ये मूल्य भी इसराइलियों ने लगाया था और जैसा परमेश्वर ने हुक्म किया, इस पैसे से कुम्हार का खेत खरीदा गया। यीशु गवर्नर के सामने खड़े किए गए और गवर्नर ने उनसे पूछा,
क्या तुम यहूदियों के राजा हो?
यीशु ने जवाब में कहा,
तुम खुद ऐसा कह रहे हो।
प्रधान पुरोहितों और बुजुर्ग नेताओं के आरोप लगाने पर भी यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पिलातुस ने उनसे कहा,
क्या तुम सुन रहे हो कि वे तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं?
यीशु ने उनसे एक भी शब्द नहीं कहा, जिससे गवर्नर को बड़ी हैरानी हुई। उस त्योहार के दिन हर साल गवर्नर लोगों की पसंद के अनुसार एक कैदी को छोड़ दिया करता था। उस समय बरब्बा नाम का एक बहुत खतरनाक कैदी था, इसलिए जब वे इकट्ठे थे, पिलातुस ने उनसे कहा,
तुम्हारे लिए मैं किसको छोड़ दूं, बरब्बा को या मसीह कहलाने वाले यीशु को?
उसे मालूम था कि यीशु को ईर्ष्या की वजह से उसके हाथ सुपुर्द किया गया था। जब वह न्याय आसन पर बैठा था, उसकी पत्नी ने यह संदेश भेजा,
इस बेगुनाह आदमी के साथ कुछ भला बुरा ना करना। मैंने आज रात स्वप्न में देखा है कि इसकी वजह से मैंने बहुत पीड़ा सही।
लेकिन प्रधान पुरोहितों और बुजुर्ग अगुओं ने भीड़ को उकसाया कि वे बरब्बा को बचा लें और यीशु को मरवा डालें। गवर्नर ने पूछा,
तुम इन दोनों में से किसको आजाद देखना चाहते हो?
उन्होंने कहा,
बरब्बा को।
पिलातुस ने उनसे कहा,
तब मसीह कहलाने वाले यीशु के साथ मैं क्या करूं?
उन सबों ने ऊंची आवाज से कहा,
उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए।
गवर्नर ने कहा,
क्यों? उसने क्या बुराई की है?
वे और ऊंची आवाज से चिल्लाए,
उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए।
जब पिलातुस ने देखा कि मामला सुलझने के बजाय बिगड़ता जा रहा है, उसने भीड़ के सामने अपने हाथों को ये कहते हुए धोया,
मैं इस निरपराध इंसान के खून से मुक्त हूँ, अब तुम ही देखते बैठो।
तब सभी लोगों ने जवाब दिया,
इसके खून की सजा हमें और हमारी पीढ़ियों को मिले।
तब पिलातुस ने उनके लिए बरब्बा को आजाद कर दिया और यीशु की पिटाई कराने के बाद उन्हें क्रूस की सजा दिए जाने के लिए सौंप दिया। तब गवर्नर के सिपाही यीशु को गवर्नर के महल में ले गए और उनके चारों तरफ सिपाहियों का मजमा लग गया। उनके कपड़ों को उतार कर उन्हें बैंगनी चोगा पहनाया गया। कांटों का ताज बनाकर उन्होंने यीशु के सिर पर रखा और हाथ में एक सरकंडा दे दिया। उनके सामने गिरकर उनकी हंसी उड़ाते हुए वे कहने लगे,
यहूदियों के राजा, प्रणाम।
उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और सरकंडे से सिर पर मारा। हंसी उड़ाने के बाद उन्होंने उनके बैंजनी चोगे को उतार कर उन्हीं के कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने चल दिए। बाहर आने के बाद उन्होंने शिमोन कुरेनी को पकड़ा और जबरदस्ती उसके ऊपर क्रूस लाद दिया। जब वह खोपड़ी कहलवाने वाले स्थान गुलगुता तक पहुँचे, उन्होंने यीशु को पीने के लिए सिरका और पित्त मिला हुआ दाकरस दिया। उसको चखते ही यीशु ने पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर चिट्ठी उठाई और उनके कपड़े आपस में बांट लिए। तभी नबी के कहे हुए शब्द पूरे हुए कि उन्होंने आपस में मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे कपड़ों पर चिट्ठी उठाई। वहीं बैठे बैठे वे यीशु को ताकते भी रहे। यीशु के सिर के ऊपर उन्होंने ये आरोप लिख दिया, ये यहूदियों के राजा यीशु हैं। उसी समय यीशु के साथ दो चोरों को भी लटकाया गया, एक को दाहिनी तरफ और दूसरे को बाईं तरफ। जो लोग वहां से गुजरते थे वे सभी अपने अपने सिरों को हिला हिला कर कहते थे,
तुम जो प्रार्थना भवन को बर्बाद करके 3 दिन में बनाने वाले थे, अपने आप को बचाओ। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो क्रूस से नीचे उतर आओ।
इसी तरह से प्रधान पुरोहितों ने शिक्षकों और बुजुर्गों के साथ मिलकर हंसी उड़ाते हुए कहा,
उसने दूसरों को बचाया लेकिन अपने आप को न बचा सका। अगर वो इसराइल का राजा है तो क्रूस से नीचे उतर आए, हम भी विश्वास कर लेंगे। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, अगर वो चाहे तो आकर उसे बचाए, क्योंकि उसी ने तो दावा किया था कि वो परमेश्वर का पुत्र है।
इसी तरह से उन दोनों चोरों ने भी, जिन्हें दोनों तरफ लटकाया गया था, यीशु की हंसी उड़ाई। उसके बाद दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में घोर अंधेरा छाया रहा। करीब 3 बजे यीशु मसीह ऊंची आवाज में चिल्ला उठे,
एली, एली, लमा सबक्तनी।
इसका मतलब है, मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? वहां पर खड़े कुछ लोगों ने यह सुनकर कहा,
यह आदमी एलिया को बुला रहा है।
तुरंत उनमें से एक ने दौड़कर दाख मधु और सिरके में डुबोए स्पंज को एक सरकंडे पर रखकर यीशु को पीने के लिए दिया। बाकी लोगों ने कहा,
उसे चिल्लाने दो, अभी देखते हैं कि एलिया उसे बचाने आता है या नहीं।
यीशु ने ऊंची आवाज में चिल्लाने के बाद अपनी आत्मा त्याग दी। उसी समय तुरंत प्रार्थना भवन का पर्दा ऊपर से नीचे 2 हिस्सों में बंट गया। पृथ्वी डोल गई, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गईं और बहुत से संतों की देह जो सो चुके थे फिर से जी उठीं। वे जी उठने के बाद यरूशलेम गए, जहां बहुत से लोगों ने उन्हें देखा। सूबेदार और उसके साथ जो लोग चौकीदारी कर रहे थे भूकंप और दूसरी घटनाओं को देखकर डर कर कहने लगे,
ये तो सचमुच में परमेश्वर के पुत्र थे।
वहां बहुत सी महिलाएं जो यीशु की सेवा करती थीं और साथ साथ चली आई थीं, दूर से ताक रही थी। उन्हीं में से मरियम मक्तलेनी, याकूब और योसेस की माँ मरियम और जब्दी के बच्चों की माँ थी। शाम होते होते अरमतिया का यूसुफ नाम अमीर आदमी, जो यीशु को मारने लगा था, आया। पिलातुस के पास जाकर उसने यीशु की देह मांगी। तब पिलातुस ने हुक्म दिया कि उसे यीशु की लाश दे दी जाए। उस लाश को यूसुफ ने साफ मलमल के कपड़े में लपेटकर अपनी उस नई कब्र में रखा, जिसे उसने चट्टान में खुदवाया था। उस कब्र के मुंह पर एक बड़े पत्थर को रखवाकर वह वहां से चला गया। मरियम मग्दलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने ही बैठी हुई थीं। अगले दिन, जो कि तैयारी के दिन के बाद था, प्रधान पुरोहित और फरीसी पिलातुस के पास आकर कहने लगे,
महाशय, जीते जी उस धोखेबाज ने कहा था 3 दिन बाद वो जी उठेगा, इसलिए ये आज्ञा दें कि 3 दिन तक कब्र की रक्षा की जाए, नहीं तो कहीं उसके शिष्य उसकी लाश को चुराना ले जाएं और लोगों में ये बात फैला दें कि यीशु मरे हुओं में से जी उठे हैं। ये तो पहली गलती से ज्यादा बड़ी गलती होगी।
पिलातुस ने उनसे कहा,
तुम्हारे पास पहरेदार हैं, जितना हो सकता है उतना ज्यादा पहरा बढ़ा दो।
इसलिए उन्होंने जाकर पत्थर पर मोहर करके और संतरी को बिठाकर पहरा और ज्यादा कड़ा कर दिया। मत्ती अध्याय 28। विश्राम दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मग्दलेनी और दूसरी मरियम कब्र पर आईं। अचानक एक जोरदार भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आया। कब्र के दरवाजे पर से पत्थर हटाकर वह उसी पर बैठ गया। दिखने में वह रोशनी की तरह था और उसके कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे। डर की वजह से पहरेदार कांपने लगे और मरे हुए इंसान की तरह हो गए। स्वर्गदूत ने महिलाओं से कहा,
डरो मत, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था उन्हीं को तुम ढूंढ रही हो। वो यहां नहीं है, क्योंकि जी उठे हैं।
उसने कहा,
आओ और वे जगह देखो जहां उनकी लाश रखी थी। जल्दी जाकर उनके शिष्यों को बताओ कि वे मरे हुओं में से जी उठे हैं। वे तुमसे पहले गलील पहुंचेंगे, तुम वहीं पर उनसे मिल पाओगे।
डर और आनंद से भरे वे कब्र से दौड़ी ताकि शिष्यों को जाकर खबर दें। जैसे ही वे यह खबर शिष्यों को देने वाली थीं, रास्ते में यीशु की मुलाकात उनसे हो गई। उनके पास आकर उन लोगों ने यीशु के पैर छू लिए और दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा,
डरो मत, जाकर मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील को जाएं, वहीं पर वे मुझे मिलेंगे।
जब ये महिलाएं जा रही थीं, कुछ पहरेदार वहां दिखाई दिए। उन्होंने प्रधान पुरोहितों को सब कुछ बता दिया। जब उनकी मुलाकात कुछ और परिचित लोगों के साथ हुई, तो उन्होंने सिपाहियों को बड़ी रकम देते हुए किसी के पूछने पर यह कहने के लिए कहा
कि रात को जब हम सो रहे थे तब उनके चेलों ने आकर उनके शव को चुरा लिया। अगर ये बात गवर्नर के कान तक पहुंचती है तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें बचा भी लेंगे।
उन्होंने पैसे लेकर वही किया जैसा उनसे कहा गया था। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। तब 11 शिष्य गलील के उस पहाड़ पर चले गए जिसके विषय में यीशु कह रहे थे। जब शिष्यों ने यीशु को दर्शन में देखा और प्रणाम किया, परंतु कुछ लोग संदेह भी करने लगे। यीशु ने आकर उनसे कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सभी देशों के लोगों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञाएं मैंने दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। देखो, जब तक कि दुनिया का अंत ना हो मैं तुम्हारे साथ हूं।